तीन नंबर को कहते हैं अल्टीमेट प्लेयर, तीन नंबर को कहते हैं एक ऐसा नंबर जो कि काबू पा सकता है।
तीन नंबर गुरु का नंबर भी होता है,
गुरुदेव का नंबर होता है, जुपिटर का नंबर होता है, बृहस्पति कहते हैं इसे। देखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ना ये मोमेंट ही है। आप जब शांत होते हो ना आपको अपना करा हुआ भी नजर आता है, जो आप करने वाले हो जो प्रोजेक्शन है वो भी नजर आता है। लोग कहते हैं कि ये सेग्रीगेटेड मूवमेंट है, ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, जो अब करूंगा ना ये एक पल में पास हो जाएगा। अब मेरा जो इस वक्त का काम है वो मेरे पास भी बना रहा है और मेरा फ्यूचर बना रहा है। और जैसे ये तीनों देखने होते हैं ना उसे सिर्फ शांत होना होता है। मार्स नंबर इतना ब्यूटीफुल है कि इसकी एनर्जी यूनिवर्सल है, इसे बीज कहते हैं। हर चीज का बीज डलना ये मार्स इंपैक्ट है। गर्भ के अंदर बीज डलता है, बच्चा होता है। ऊर्जा का बीज डलता है, काम होता है। आप किसी कार्य का बीज डालते हो काम की शुरुआत करते हो, दैट्स मार्स। मंगल कहते हैं इसे।
So yo, hello, this is Shank Dimle and welcome back to the podcast. आज का podcast is really, really amazing because मैं बोल रहा हूँ amazing है, तुम लोग को देखने का है और देखने का ही है because Siddhant sir is here again and this podcast was awaited for me because मेरे को है ना सर के साथ बार बार podcast करने को मजा आता है। And हम लोग start में अभी बात कर रहे थे क्या topic करें, तो हम लोग ने decide किया जो flow हो जाए उधर चलते हैं। So we're not wasting any time. Let's move on. और सर ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है हिंदी में, सिर्फ हिंदी में,
ठीक है?
तो लेट्स स्टार्ट सर, क्या बात कर सकते हैं आज?
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। एक शिवजी का थोड़ा मंत्र से स्टार्ट करें?
यस लाइक एवरी टाइम।
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चेदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सुरन्मौलिकल्लोलिनीचारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्ठं प्रगल्भं परेशं अखंडम अजं भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलनम शूल पाणी भजेहं भवानिं पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविंदम भजंती हलोके परेवा नराणम नतावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदाम शंभुतभ्यम जरा जन्म दुखोगिता तत्पिमानम प्रभो पाहि आपन्न मामि शशंभु रुद्रकाशटम प्रेतम विप्रेण हर्तुषे ये पठन्ति नरा भक्त तेषां शंभु प्रसीदति हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
वाइब्रेट होने लगा है। I started vibrating. सर कैसे चल रहा है सब कुछ?
एनर्जी में।
अरे बाप रे। you did many more podcasts and I loved all your podcasts. मैं देखता है ना बीच बीच में।
Thank you, sir.
I liked the recent one which was uploaded. I think so. आपके घर पे शूट हुआ था वो?
जी, मेरे क्लाइंट पे शूट हुआ था वो।
क्या बात है, आपके पास वज्र विज रहे?
हाँ सर।
Why is that used?
In the Lama Fera, we use that. Or in the cancer healing, I use that particularly.
Okay.
Actually, I have brought those things from the Himachal. हमने हिमाचल से purchase किया था। अच्छा। और इसीलिए लिया था क्योंकि cancer patients को ना काफी impact आना था। उनकी बॉडी में ना वाइब्रेशन से हम बहुत चेंजेस ला सकते हैं। और आपको पता ही है कैंसर पे बहुत काम कर रहा हूँ, काफी सीखने को मिला है। लोग डार्क से बहुत डरते हैं, मुझे डार्क से बहुत प्यार है। लोग शिव को व्हाइट फॉर्म में समझते हैं, मुझे शिव को व्हाइट के अलावा ब्लैक से भी देखने में कोई हर्ज नहीं है।
अघोर,
अब आप उसे अघोर कहो, घोर कहो, कपाल कहो, रुद्र कहो, भैरव कहो, काली कहो, कुछ भी कह लो, मुझे समझ में आता है इतना कि हर कोई सफेद के लिए ही नहीं बना होता, कुछ काल के लिए भी बने होते हैं। तो मेरी जर्नी आई थिंक महाकाल के द्वारा ही निर्धारित करी गई है।
यस यस, दैट्स ट्रू।
तो उन्हीं का आदेश है इसलिए यहां हूं, उन्हीं का आदेश है इसलिए कैंसर भी मुझे हील करने में समझ में आया। और सच कहूं तो ये उन्हीं की कृपा है कि लोग भी इम्पैक्ट महसूस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो एनर्जीज की बात करी थी, अब ना वो समझ में भी आ रहा है, जी भी रहे हैं और लोगों तक भी वो बात रेसिप्रोकेट होकर पहुंच रही है। और बहुत प्यारी जर्नी है ये। कैंसर के पेशेंट को ना अब कैंसर से डर नहीं लग रहा, वो उस अनिश्चितता से मर नहीं रहे। पहले जो इनसिक्योरिटीज थी अब वो है नहीं,
वो मतलब अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरी तरीके से।
एक्सेप्ट नहीं, वो खुश हैं। अच्छा। वो कैंसर को थैंक यू बोल रहे हैं।
अच्छा।
उन्हें एजुकेट करने के लिए, उनकी लाइफ में आने के लिए। अब वो कैंसर से लड़ नहीं रहे हैं। मैं उनकी फैमिली से बात करता हूँ, उनकी फैमिलीज को भय नहीं है इस बात का कि कोई चला जाएगा, जाना सबको एक ना एक दिन है, कोई ऐसे जाएगा कोई वैसे जाएगा। पर वो मुझसे इतना कहते हैं, सर हमारा जो पेशेंट है ना वो अब पेशेंट ना रहे, हमारा परिवार का मेंबर ना खुश हो जाए, जाते वक्त भी खुश रहे और जब तक है खुश रहे।
और आई थिंक सो ये कहाँ पे भी जो लिखा है कि जाते समय दुख नहीं मनाना चाहिए।
एग्जैक्टली। पर होता क्या है सर, ये बात ना समझने में बहुत पेनफुल है। लोग ना पेन से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। काल को देखते वक्त, काले को देखते वक्त ना बहुत भयभीत होते हैं, जबकि काला तो एक निरंतर पार्ट है अपना, आंख बंद करो पहले काला ही आता है। तो इससे डरना कैसा?
ट्रू है, ट्रू है।
तो मेरी फिलॉसफी ना इस काल के प्रति बहुत समर्पित है, इस ब्लैकनेस के प्रति बहुत समर्पित है। सोच विचार में ब्लैकनेस ना हो, बट ज्ञान के अंदर ब्लैक और व्हाइट को दोनों को समझने की एबिलिटी हो, दैट इज हीलिंग फॉर मी।
दैट इज ट्रू, बिकॉज अभी रिसेंटली आई हैड मेट समवन, दे आर इनटू क्वांटम हिप्नोसिस।
ब्यूटीफुल।
एंड मेरे को ये पता नहीं था क्वांटम हिप्नोसिस क्या है। सो दे वर लाइक कि एंड देन शी टोल्ड कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते, देन आई स्ट्राइक अरे सर भी करते। सो एग्जैक्टली कैसे कैसे होता है एंड कैन यू सी फ्यूचर ऑल्सो इन दैट स्टेट?
देखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ना ये मोमेंट ही है। आप जब शांत होते हो ना आपको अपना करा हुआ भी नजर आता है, जो आप करने वाले हो, जो प्रोजेक्शन है वो भी नजर आता है। लोग कहते हैं कि ये सेग्रीगेटेड मूवमेंट है, ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं, जो अब करूंगा ना ये एक पल में पास हो जाएगा। अब मेरा जो इस वक्त का काम है वो मेरा पास भी बना रहा है और मेरा फ्यूचर बना रहा है। और जिसे ये तीनों देखने होते हैं ना उसे सिर्फ शांत होना होता है। व्हेन यू आर इन द एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ साइलेंस, जब आप बिल्कुल ना एक निर्वात की स्थिति में पहुंच जाते हो, माइंड को एकदम रिलैक्स कर देते हो, आपको तीनों दिखने शुरू होते हैं, आपको डर नहीं लगता। स्टार्टिंग में हमें बहुत डर लगा था, स्टार्टिंग की जर्नी में बहुत डरते थे कि पास नहीं दिखा तो, पेशेंट डिसअपॉइंट हो गया तो, पेशेंट नहीं बच पाया तो, हमने किसी की उम्मीदें तोड़ दी तो। अब कोई ऐसा भय नहीं है, क्योंकि उम्मीद है ना तो टूटेगी ही नहीं। अब फेथ इतना गहरा हो चुका है ना पिछले कुछ टाइम के अंदर कि उम्मीद जिनकी बनती है ना उनकी टूटने के लिए बनती ही नहीं है, और जिनकी उम्मीद अगर है ही नहीं तो उनकी उम्मीद को बनाने में प्रयास करना पड़ता है।
बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू मी आस्क की लाइक इससे कुछ हुआ नहीं तो मेरे पास आंसर नहीं रहते बोलने के लिए, बस प्रैक्टिस करो, ट्राई करो.
आपने जिंदगी के अंदर कुछ करा और उसके बाद आप शांत हो गए, आप समाप्त हो गए. आपने कुछ करा ना, लोगों को वो एफर्ट तक भी नहीं पहुंचना, उन्हें उससे पहले पहले मजा चाहिए सारा. सर इससे बचा लो, उससे बचा लो, अगर इसका फायदा नहीं हुआ तो, कल को पैसे नहीं रहे तो. अगर शिव ने कभी समाप्त करना है ना आपको, जैसे मैं शिव कहता हूँ या महादेव कहता हूँ, लोगों के लिए कोई भी नाम हो सकता है.
मेरे लिए बाबा
बाबा मेरे लिए भी उनके लिए बाबा निकलता है बहुत बार, और मैं बाबा ही कह के संबोधित करता हूँ या पापा कहता हूँ.
पापा सेम
मेरा भी ऐसा चलता है. तो मैं कहता हूँ अगर उन्होंने माई बाप ने हमें मारने का तय कर लिया है ना, तो मैं डरूं क्यों. मुझे बहुत बार लोगों ने कहा कि तुम्हारा भी शायद बॉडी में कैंसर सही होगा, ये होगा वो होगा. हाँ तो ठीक है, अगर अंत है तो इस अंत पे इतना फोकस करके मैं अपने प्रेजेंट लाइफ को खराब कर लूं, ये बहुत स्टुपिडिटी है. लोग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ना बहुत भटक जाते हैं, वो प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर रहे. आप अगर प्रेजेंट को जी लिए ना, आपका माइंड डेफिनेटली आपको फ्यूचर और पास्ट तक अपने आप ले जाएगा बिना किसी थेरेपिस्ट के. हमारा बेस्ट थेरेपिस्ट ना हमारे अंदर होता है,
सेल्फ.
लोग जब अपने सेल्फ थेरेपिस्ट को ध्यान से देख नहीं पाते ना, तो इधर उधर भटकते हैं. तब उनको ना किसी बाबा के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास या कहीं जाना पड़ता है. आप अगर ध्यान देकर सिर्फ अपने मेडिटेशन पे फोकस करो ना, आप अपने शून्य में जाना शुरू कर दो, आपको डर नहीं लगेगा किसी भी चीज से, क्योंकि शून्य में ही ना महाकाल है. और जिसने उसका दर्शन कर लिया ना एक बार,
सब पा लिया.
आपको पाने और खोने की चिंता ही नहीं रहती उसके बाद, तो यू आर फ्री,
फ्री लिबरेटेड बेसिकली.
और आप जब फ्री होते हो ना, तो आपके हर सेल में फ्रीडम है. हम बंधे हुए हैं इसलिए तो कैंसर है, हम बंधे हुए हैं इसलिए तो टीबी है, आपको डायबिटीज है. आप एक बार खुलना तो शुरू हो जाओ. ऐसा क्यों होता है, गांव का एक इंसान सेम रूटीन करता है, उसको कुछ नहीं होता, शहर का इंसान बच बच के चलता है फिर भी मर रहा है.
ये एग्जांपल देके, आई वाज इन हिमाचल राइट, दे वर स्मोकिंग अ लॉट. मतलब अभी क्या स्मोक करते सबको पता है, दे वर स्मोकिंग अ लॉट दिन रात वो वहाँ पे गांव पे रहने वाले, बिकॉज आई डू होम स्टेज. तो वही मैं पूछा कि आपको कुछ डर भी नहीं लगता, आपको कुछ होता नहीं है, तो बोलता नहीं, बोले देख लेंगे.
आपका फेथ है ना, जहाँ फेथ ही नहीं है वहाँ तो कोई है ही नहीं ना. मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, और मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम कई बार ना एनर्जी से गाइडेंस लेते हैं, एनर्जी साफ साफ मना कर देती है कि इसका केस नहीं लेना. मैं नहीं लेता, आपको बताया मेरा गाइडेंस बेस चलता हूँ, हमेशा गाइडेंस बेस चलाऊँ. यदि परमिशन नहीं है ना, तो मेरी कोई औकात नहीं कि मैं हर केस को हैंडल कर लूँ. हर केस दुनिया का मुझे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल नहीं. इतना लालच भी नहीं, इतनी भूख भी नहीं है. कल मेरे कंपनी में कोई मुझे कह रहा था कि सर कुछ केस मिस हो जाते हैं, लोग बुरा मान जाते हैं, चले जाते हैं. मैं जिसका फेथ है ना वो बना रहेगा, जिसे जाना है ना वो आने के लिए आए नहीं है. तुम चिंता उस पर करो ना जो तुम्हारा फेथ है,
जो खो रहा है उस पर फोकस करो.
एग्जैक्टली, जो फेथ लेके मेरे पास बना हुआ है कि सर मैं रहूंगा, आप चाहे टैक्स पढ़ो, लिखा हुआ आता है कि सर मेरा टैक्स कभी तो पढ़ोगे, मुझे भरोसा है कभी ना कभी पढ़ोगे. और मैंने शायद 4-5 वीक बाद उसका टैक्स पढ़ा. मेरे फोन में बहुत सारे टैक्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, पता नहीं कितने टैक्स आते हैं. मैं रिप्लाई करा, कहता सर मुझे फेथ था आप ही रिप्लाई करोगे. अब जिसको इतना फेथ है ना, मेरा फर्ज बनता है इसके साथ जुड़ने का. उसने कहा सर मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं मुझे चाहिए भी नहीं. मेरे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां पैसे चाहिए नहीं होते.
लास्ट टाइम तुमने डिस्कस किया था,
मैंने कहा तू जुड़, तू फैमिली में आता सही. और आज फैमिली बड़ी हो रही है.
दैट्स ट्रू,
फेथ है. लोग ना बार बार कहते हैं इस बात को कि ऐसे चलिए, वैसे चलिए, ये करिए, वो करिए. आपकी अगर डूज और डोंट की इतनी बड़ी लिस्ट जा रही है ना, आप भयभीत हो. मुझे अभी प्रश्न सुनने में आया कि सर आप तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हो, न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हो, टैरो ओपन करते हो, तो आप डर तो प्रमोट कर रहे हो, आप किसी फियर को तो प्रमोट कर रहे हो. मैंने कहा मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी नेम चेंज के लिए या डेट चेंज के लिए नहीं पढ़ा रहा. और जो कर रहे हैं ना लोग उन्हें जानते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मैं लेना ही चाहूंगा, उनको लोग जानते हैं जिनका फिलॉसफी डर पे आधारित है कि नाम चेंज नहीं करा तो मर जाओगे. ऐसा तो सब कंट्री को फिर हम बदल देते, गरीब कंट्री को रहती नहीं. अपना कर्म समझने के लिए हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इनको आधार में लेते हैं.
वी कैन बूस्ट इट विद दैट.
सबसे पहली चीज बचा कि आपको अंडरस्टैंडिंग आती है, यू अंडरस्टैंड समथिंग. अगर मुझे मेरे महादेव ने कोई कर्म दिया है और मुझे मेरा कर्म ही नहीं पता, लानत ऐसी जिंदगी पर.
हाँ बराबर.
अगर आपको कर्म पता है, आपके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, क्योंकि आपको दिख रहा है क्या हो रहा है और क्या कर रहे हो. लोगों को यही तो समझ में नहीं आ रहा. मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं एकदम एब्सोल्यूट साइलेंस में. मैंने कहा कोई प्रश्न पूछोगे मैं उत्तर दूंगा. सर मन ही नहीं कर रहा प्रश्न पूछने का. कोई प्रश्न ही नहीं है. मैं कहा भाई तो अपॉइंटमेंट क्यों बुक किया था. जो कई वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं वो आते हैं. सर ऐसा लग रहा है कि बस आप ही कुछ कह दो. मैं तुम्हारा कर्म भी मैं करूं, मेरा कर्म भी मैं करूं, तो तुम्हारी लाइफ फिर मैं ही ना जी लूं.
आज सर इंटरव्यू लेंगे.
सॉरी आज मैं थोड़ा अलग जोन में हूं.
नहीं नहीं
आपसे क्लास स्टार्टिंग में मैंने कह दिया सेशन की आज मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना है. आज जहां महादेव ले जाएंगे वहां चलूंगा.
एग्जैक्टली.
आज सिर्फ उंगली उनकी पकड़ेंगे. और मेरे ख्याल से आपकी ऑडियंस ना बहुत मजे करने वाली है इस डिस्कशन को. क्योंकि बहुत दिनों से ना सच मैंने भी नहीं बोला और बहुत दिनों से शायद उतना सच जितना मुझे बोलना चाहिए ना मैं बोल नहीं पा रहा था.
आज किससे भी सब सच बोल जाते हैं.
फैक्ट है. और बोलने की इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए. इतने दिनों में सिर्फ इतना समझ में आया है कि हर चीज मेरे लिए नहीं है. मैं हर चीज के लिए नहीं बना पर जिस चीज के लिए बना हूं ना उसे पूरा करूंगा. और वो मेरा काम है और मुझसे वो कोई नहीं छीन सकता. इतना फेथ आया है तभी मैं आपके पास दोबारा आ पाया हूं. इतना फेथ आया है तभी हम दोबारा से ना एक डिफरेंट वाइब्रेशन से कनेक्ट हो रहे हैं.
यस एग्जैक्टली.
हमारा लास्ट टाइम का वाइब्रेशन हमारा इस वाइब्रेशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. क्योंकि आपके अंदर भी फेथ आया मेरे अंदर भी फेथ आया. जितने भी पेशेंट्स मुझे सुन रहे हैं जितने भी बीमार लोग सुन रहे हैं आप पहले इस बात को ना मन से निकाल दो कि कुछ दिक्कत हो रही है. आप ये अंडरस्टैंड करो कि हुआ क्यों. मेरी स्टार्टिंग में गलती कहां से थी.
द रूट कॉज बेसिकली.
एग्जैक्टली द रूट कॉज. क्या मेरे पितरों की तरफ से गलती है. मेरे माँ बाप की तरफ से गलती है. उससे एरर को आप भी रेक्टिफाई कर सकते हो. मुझे बहुत बार क्रिटिसिज्म मिलता है कि तू अच्छा खासा पढ़ा रहा था मेडिकल के स्टूडेंट्स को कोचिंग दे रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा रहा था ये क्या तूने फील्ड पकड़े बाबा वाला. पत्रियां पढ़ता फिर रहा है लोगों से डिस्कशन करता फिर रहा है ये तू कौन से फील्ड में आ गया. मुझे नींद नहीं आ रही थी. आज मेरी नींद अच्छी आ रही है. दैट्स ऑल द रीजंस. मैं तो बेचैन था आज मैं बहुत शांत हूं.
बिकॉज बोलते हैं ना जिसका मेरा मैंने ये देखा है कि एस्ट्रोलॉजी वाइज अगर की तो किसी का ट्वेल्थ में रहता है तो वो स्पिरिचुअली इंक्लाइन ज्यादा हो जाता है.
देखो 12 भाव ना 12 इमोशंस हैं. अब केतु कहीं भी रहेगा केतु तो केतु है ना. वो आपको रूट से जोड़ रहा है. केतु का मतलब है आपके अंदर के स्पाइनल कॉर्ड के निचले पार्ट में कुंडलनी को एक्टिवेट करना. अब आपकी कुंडली किस भाव के युक्त है ये केतु 12 भाव में होता है. राहु वो जहां पर बैठेगा उस जगह से आपको डिस्टॉर्ट कर देगा डिफ्लेक्ट कर देगा. बेसिकली दोनों का पर्पस क्या है. एक भटका रहा है एक अटका रहा है. राहु सिर के ऊपर चला जाता है सिर को भ्रमित कर देता है. केतु रूट के नीचे होता है आपको बांध लेता है. लोग इसे कहते हैं अब इनसे डरो. ये ज्ञान के कारक हैं. ये किस हाउस में बैठते हैं ना ये रेलेवेंस शो करते हैं कि व्हाट इज द वाइब्रेशन ऑफ दैट हाउस. कि आपको जिंदगी में भटकाएगा क्या जहां राहु बैठा है और आपको कहां अटकना पड़ेगा कहां बार बार जाना पड़ेगा जहां केतु बैठा है. न्यूमरोलॉजी में हम प्लैनेट्स को बहुत बार पढ़ाते हैं. लोग कहते हैं कि सर रेमेडीज लेके आइए हमें सॉल्यूशन बताइए. मैं कहा पहले समझ दो लो प्लैनेट क्या कह रहा है. प्लैनेट की स्ट्रक्चर में ही उसका सारा का सारा कॉन्फिगरेशन है. न्यूमरोलॉजी में बहुत बार बात कर रहे होते हैं कि नंबर्स ऐसे लिखे होते हैं. किसी ने कहा हिंदी में वक्त तो अलग लिखते हैं इंग्लिश में हम अलग लिखते हैं मलयालम में कन्नड़ में अलग लिखते हैं.
बट एक चीज मैंने देखी है कि ये 2 साल में लेके न्यूमरोलॉजी बहुत बढ़ गया. ऐसे क्यों है.
डर बढ़ गया. जब जब डर बढ़ेगा ना कोई यहाँ पर ऐसी विद्या लेके आएगा. देखो भय को लोग बेचते हैं. मेरे जितने भी पॉडकास्ट आपके व्यूअर्स अगर कभी सुनना चाहें आप सुनना चाहें लोग सुनना चाहें मैं कभी भय को प्रमोट नहीं करता.
ये नहीं करा
तो ये होगा ऐसा कुछ नहीं है. किसी ग्रह को आपको मारने में का कोई हक नहीं है. किसी नंबर को किसी को डिस्ट्रॉय करने का कोई हक नहीं है ना इंटरेस्ट है. पर बात ये होती है कि दुनिया तो खराब हो जाएगी ना फिर दुकान कैसे लाएंगे.
बराबर
है. अगर मैंने आपको कह दिया कि आपकी सारी हिम्मत आपके मेडिटेशन में ही है. मैं मॉर्निंग में कहता हूँ 5 से 6 बजे मेडिटेशन कर रहे हैं. अब ये बात बोलने के लिए मुझे भी गट्स चाहिए पहले तो कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है तो मेडिटेशन करने आ गए. मेडिटेशन की फीस सस्ती है 999 रुपीज 1 महीने की. अब मेरी कंसल्टेशन कौन लेगा. तो इतना भरोसा मुझे बड़े भोले पर है ना कि वो भी चलेगा.
बट जिसको चाहिए रहता है वो ऑटोमेटिकली आ जाते
हैं. लोग बिल्कुल लेते हैं मेडिटेशन. और अब मेरे पास मेरे मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग में मैं उन्हें चार्ट पढ़ना सिखाता हूँ. मेरे क्लाइंट को मैंने चार्ट पढ़ना सिखाया उसे. प्रॉपर मैं कहता हूँ पेन पेपर लेके बैठिए, मैं आपको बताता हूँ किस प्लैनेट की क्या पोजीशन है, और क्लाइंट को मैं एजुकेट करता हूँ, लिटरेट करता हूँ, उसे मैं खाली ये नहीं बताता कि रेमेडीज ये करना है। कई क्लाइंट होते हैं बहुत ईगोस्टिक होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, उन्हें रेमेडी चाहिए होती है, समझ जाता हूँ और देखकर किसे रेमेडी देनी है, पार्ट दिया खुश हो गया चला गया। बट कुछ क्लाइंट आते हैं समझने आते हैं जिंदगी को, तो मैं हमारा एक घंटे का सेशन होता है, मैं परवाह ही नहीं करता कि एक घंटे है या दो घंटे, इसे पढ़ाना है और इसे एजुकेट होना है, मुझे एजुकेट करना है,
सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं,
वो आता सीखने। नंबर्स की स्ट्रक्चर, एक दिन बातचीत चल गई मेरे पास कि नंबर की स्ट्रक्चर पे आप बात करते हो, नंबर्स की एक साइकोलॉजी होती है, कोई नंबर वर्टिकल है, कोई नंबर कर्वी है, कोई किसी के नीचे हैश है, किसी के ऊपर हैश है, इनका मीनिंग क्या होता है। मैंने कहा ये ह्यूमन बॉडीज की तरह से है।
अच्छा,
नंबर वर्टिकल है तो आपके सेवन चक्रा से उसका कनेक्शन है, नंबर कर्व है तो आपके वही चक्र में से एक घुमाव आ जाएगा, जहां बेस नीचे आएगा वहां की ग्राउंडिंग हो जाएगी।
अच्छा,
जहां ऊपर एरो आएगा वहां पर आपका ईगो फ्लैट होने का टाइम पीरियड है। आपके नंबर को देखकर आप जान सकते हो कि लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या है। अब लोग इसे डिसाइफर करेंगे तो समझ में आएगा ना, ये तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है ना सारा सारा, कि नंबर लिखा हुआ है, नंबर फाइव कैसा है, नंबर फाइव के ऊपर हैश है, फिर एक डाउनवर्ड है, फिर एक हॉरिजॉन्टल है, फिर कर्व आ गया। तो लाइफ में कैसा लाइफ चलेगा, कभी फ्लैट लाइन, कभी डाउन, कभी फिर फ्लैट, कभी एक राइज।
वी कैन वी डू नंबर टू नंबर, 1 to 9?
डेफिनेटली डेफिनेटली वी कैन डिस्कस ऑन दैट।
सो स्टार्ट करते हैं 1 से लेके 9 तक,
ठीक है,
एंड 0 का भी वैल्यू होता है,
आऊंगा आखिरी में उसी पे आऊंगा, मुझे याद दिला देना शून्य को नहीं भूलना है।
यस,
0 एक नंबर नहीं है लिटरेचर अपने आप में, तो 0 को आखिर में महादेव की तरह से डील करेंगे, जैसे महादेव को पढ़ते हैं 0 को पढ़ेंगे,
ठीक है।
वैसे तो मेरे लिए महादेव ही 1 से लेके 0 तक है, इसी में सब कुछ है। सॉरी व्यूअर्स को कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये ओवर कर रहा है, मेरे को ऐसा नहीं, मेरा मेरी भक्ति ऐसी,
प्यार है वो,
इश्क होता है, इश्क के बारे में इंसान बात करेगा ही करेगा मुझे उससे। 1 नंबर एक वर्टिकल अपलिफ्टमेंट भी है, एक डाउनफॉल भी है, तो 2 टाइप के करेक्टर मिलते हैं, या तो बहुत हाई राइज होते हैं या बिल्कुल एकदम स्टीप डाउन होते हैं। जो भी करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्मेट में होता है, कोई और इनका डिविएशन नहीं होता, सिंगल टाइप बिहेवियर कहते हैं। पर्सनैलिटी में भी कोई एक करेक्टर एक टाइम पर लाउड हो जाता है, अगर गुस्सा है तो गुस्सा ही है, प्यार में है तो प्यार में ही है, कोई एक चीज है और वो भी वर्टिकल जा रही है, और उसी चीज को फिर आप डिक्रीज होता हुआ देख लोगे, क्योंकि इट्स स्ट्रेट लाइन, अंत नहीं होता। अगर आप एक लाइन खींच दो, लाइन का एंडिंग कहाँ है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पता नहीं, वो चल रही है, बस स्ट्रेचेबल है। तो इनका ना कभी कभी और छोर नहीं होता, तो 1 नंबर पर्सनालिटी इज एक्सपेंडेबल इन देमसेल्फ।
दिस रिमाइंडेड मी ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ अ यूनिवर्स।
एग्जैक्टली,
शिवा का लिंग
exactly. जा गया था। एक को हम इकाई कहते हैं, वो शिवा का ही एक रूप है, इका का मतलब ही होता है जो एक्सपेंडेबल है।
नाइस, आई अंडरस्टैंड नाउ।
एकम का मतलब ही होता है। नंबर 2 में कई बार हम अगर 2 को ध्यान से देखें ना, तो ऐसा लगता है झुका हुआ कोई इंसान ऐसे सिर झुका के बैठा है, शेषनाग भी कहते हैं, कुंडलिनी का रूप भी कहते हैं, कि आपकी कुंडलिनी जब जागृत होती है या आपके अंदर अवेकनिंग होती है, आप साधक की तरह ध्यान करते हो, तो आप 2 नंबर बन जाते हो। ऐसा लगता है 2 को देखकर कैसे कोई नमाजी नमाज अदा कर रहा है, घुटने मोड़कर, सिर झुकाकर,
हम्बल
हम्बल कोई मंदिर में पूजा करने बैठा है अपने ईश्वर के सामने, हम्बल अगेन। सो आपके पास में नंबर्स का एक पर्सपेक्टिव है कि आप क्या देखते हो। पहली बात तो मेरा पर्सपेक्टिव नंबर का, न्यूमरोलॉजी का कभी वो नहीं है जो नॉर्मल जनता का पर्सपेक्टिव होता है। मुझे लगता है कि आपका नंबर ही आपको लाइफ का डिसिप्लिन बता देता है।
अच्छा,
कि वेयर यू शुड बी लैंडिंग इनटू। नंबर 2 को अगर मेडिटेशन कभी नहीं करने को मिला, तो जिंदगी इनकी मिथ्या है। इनकी लाइफ का पर्पस तभी आएगा जब ये झुक के चलेंगे। अगर ये घमंडी हो गए तो टूट जाएंगे, क्योंकि झुकना ही इनकी कैरेक्टर है। नीचे एक बेस में ग्राउंडिंग इफेक्ट भी है, एक लाइन भी है,
दैट इज लाइक फोल्डेड लेग्स।
एग्जैक्टली, तो आपको झुकना होगा प्लस अपनी साधना करनी होगी।
ओके,
जब हम बेस में लाइन देखते हैं तो साधना का मार्कर भी होता है, ग्राउंडिंग का मार्कर भी होता है। तो लाइफ में कुछ भी करना, अपनी ग्राउंडिंग कर लेना। लाइफ में उठना हो,
एक सेकेंड,
हाँ लाइफ में उठना हो, लाइफ में गिरना हो, कोई बात नहीं, चलता रहता है। नंबर 2 मून का मार्कर होता है। 1 को सन कहते हैं, 2 को मून कहते हैं। तो सन हमेशा एक ही फॉर्म में होता है, ब्राइट फेजेस हो सकते हैं सन के, कभी डिमिनिश्ड फेज, मॉर्निंग में सन हल्का होता है, फिर ब्राइट होता है, फिर और ब्राइट होता है, फिर एकदम ब्राइटेस्ट होता है। बट मून के 2 साइड्स होते हैं, 15 दिन मून एक जैसा, 15 दिन मून एक जैसा। अब मून पर्सनालिटी की दिक्कत होती है कि वो एक जैसे नहीं रह पाते,
बिकॉज वो चंचल स्वभाव के होते हैं।
मुझे कई बार मून वाले लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास में ये होता है कि अमावस्या या पूर्णिमा पर हमारा बिहेवियर कुछ डिफरेंट पाया है। आपने भी ऑब्जर्व करा होगा जो साधक होते हैं उनका बिहेवियर अमावस्या और पूर्णिमा पर अलग होता है, इवन अष्टमी पर बिहेवियर अलग होता है,
अलग होता है,
चतुर्थी पे भी अलग होता है।
वो एनर्जीज पुल और पुश होती है,
15 का आधा 7.5,
अच्छा
दैट इज अष्टमी, 15 टोटल होता है स्पैन ऑफ मून, जिसे हम मून के मूवमेंट कहते हैं, उसका आधा 7.5 होता है, जहां से 8 निकल के आता है, 8 का आधा 4 होता है। हमारे त्योहार भी इसी पर आधारित है, गणेश चतुर्थी, दुर्गाष्टमी,
कृष्ण पक्ष, कृष्णाष्टमी,
ऐसा ही क्यों कि कोई भी त्योहार जो है वो इन्हीं फेजेस पे क्यों आधारित किया गया है? बाकी भी दिन होते हैं, कुछ त्योहार उन दिनों के भी होते हैं, बट कुछ देवी देवताओं के पर्टिकुलर डे ही क्यों है? क्योंकि उसका मीनिंग है, वहीं से उसकी एनर्जी क्रिएट होती है। सो नंबर 2 के अंदर ये एक डिसेंसी आ जाएगी ना, झुकाव आ जाएगा, ग्रेट नंबर, ज्यादा नहीं झुकना, लाइन भी नीचे कहती है कि एक लेवल से ऊपर में झुक जाना, क्योंकि एक लेवल के बाद आपको लाइन खींचनी होगी नंबर 2 के अंदर। नंबर 3 में 2 कर पाए जाते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तुम जहां तक झुक सकते हो झुक जाओ, तुम जितने ऊपर हो उतने ही नीचे हो, दूसरे के देखने पे डिपेंड करता है, दूसरा मूर्ख बन रहा है तुम्हारे चक्कर में। 3 नंबर को कहते हैं अल्टीमेट प्लेयर, 3 नंबर को कहते हैं एक ऐसा नंबर जो कि काबू पा सकता है।
3 नंबर गुरु का नंबर भी होता है,
गुरुदेव का नंबर होता है, जुपिटर का नंबर होता है, बृहस्पति कहते हैं इसे। अब 3 नंबर थर्ड आई को और त्रिशूल को रिप्रेजेंट करता है, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है आपके ज्ञान का केंद्र दिखाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कहते हैं इसे। 3 नंबर के लेयर आप देखेंगे तो 2 कर्व में आते हैं, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, जितना दिख रहा है उतना अज्ञानता में भी है, ये छुपा हुआ भी है। 3 नंबर की लाइफस्टाइल कभी सिंपल नहीं होती, ये देने पर चलेंगे तो दुनिया इन्हें देगी, यूनिवर्स इन्हें और देगा। 3 नंबर का पर्सपेक्टिव हमेशा लेने वाला नहीं होना चाहिए, बांटने वाला होना चाहिए। 3 नंबर को लाइफ में ऊपर रेज करना है तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोच के चलो, आपको मिलेगा ही मिलेगा।
और 3, 6, 9 इंटर रिलेटेड है,
मैं बताता हूँ इसके बारे में। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया। 3 का मतलब होता है शिव या शक्ति, त्रिकोण, अपर ट्रायंगल, अप ट्रायंगल शिव, डाउन ट्रायंगल शक्ति,
शक्ति
जब मिल जाते हैं तो 6, एक और डायमेंशन मिल जाते हैं तो 9, 9 को 3D हम स्टार कहते हैं या 3D ट्रायंगल कहते हैं,
वो स्टार फॉर्मेशन हो जाता है।
एक त्रिकोण तो 1 डायमेंशन,
यस
2 त्रिकोण, एक ऊपर एक नीचे, 2 डायमेंशन, 3D का मतलब 9 होता है। इन तीनों नंबर में है क्या कि आपकी 3 नेत्र खुल जाते हैं, आपके त्रिनेत्र जिसे हम कहते हैं। तो नंबर 3 को 3 डायमेंशन व्यू भी आता है, इनका परसेप्शन बड़ा स्ट्रांग होता है अगर ये मेडिटेशन करेंगे तो, सात्विक लाइफस्टाइल जिएंगे तो। अगर इन्होंने तामसिक लाइफस्टाइल की तरफ जाने की कोशिश करी तो इनको दिक्कत आती है।
बट कुछ लोगों का कैसे रहता है, बाय बर्थ अभी ऑटोमेटिकली फैमिलीज फीड करती है चिकन मटन, उन लोगों को सेंस नहीं रहता।
नहीं, एक मैं बात यही क्लियर कर दूं, सबको क्लियर कर देता हूं कि चिकन मटन खाना कोई सात्विक तामसिक की बात नहीं, वो आपका आहार है।
अच्छा,
सात्विक तामसिक पहले होते हैं विचार से,
ओके
आहार बाद में आता है, पहले मनसा फिर वाचा फिर कर्मणा,
ओके
आपके एक्शंस। अब अगर आप नॉक्टर्नल लाइफस्टाइल जीते हो कि रात को आप बहुत देर तक जाग रहे हो, सुबह बहुत देर से उठ रहे हो, तो आपको तो पहले ही चाहे आप चाहे नॉन वेज खाते हो वेज खाते हो हार्डली मेक्स अ डिफरेंस।
बट मोस्टली कुछ कुछ साधक होते हैं जो रात को साधना करने बैठ जाते हैं।
देखिए आप किस ऊर्जा को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप तमस को जानना चाहते हो, आप काल को जानना चाहते हो, आपका विचार क्या है। जनरल लोगों को सुबह के ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा एब्जॉर्ब करनी चाहिए, उसके बाद में जो साधनाएं होती हैं वो रात्रि की होती हैं, पक्ष होते हैं, प्रेत पक्ष होता है, भूत पक्ष होता है, हम वहां पर जागते हैं क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, बट हर किसी के लिए वो पक्ष नहीं है। अगर आपको एसेंस ऑफ लाइफ समझना है तो एक एबोरल एनर्जी या नॉक्टर्नल एनर्जी वैसे चाहिए होगी, मतलब मॉर्निंग में या नाइट वाली एनर्जी चाहिए होगी। जनरली मॉर्निंग वाली एनर्जी सबके लिए बेनिफिट होती है, वात पित्त कफ के लिए भी बेनिफिट होती है, सुबह जल्दी उठ जाओगे तो वात पित्त कफ भी कंट्रोल
होता है,
बॉडी के अंदर आपके कोई एक डिफॉर्मिटी नहीं आएगी।
बट बेसिकली नॉट जस्ट वात पित्त कफ, एनी डिजीजेस आर अवॉइडेड। मैंने देखा
वात पित्त कफ ही तो डिजीज है,
मतलब बाकी के भी अगर रिलेटेड रहेगा नहीं रिलेटेड रहेगा आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग
ओके
कि मतलब अभी मैंने देखा है क्योंकि आई स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली, तो क्या होने लगा कि एलर्जीज बहुत कम हो गए, गायब हो गए। तो वो एक चीज मैंने देखा है. एंड अगर मैंने बोला ब्रेन को अभी कि मेरे को ये नहीं चाहिए अभी, तो वो होता ही नहीं है. इट इज सो स्ट्रॉन्ग.
देखो वात पित्त पित कफ का ना एक आयुर्वेद इसी पे आधारित है. तीन चीजों से ही सारा जनरेट होता है. जितने कैंसर केस हम देखते हैं ना, वो हमेशा पित्त आधारित होते हैं.
अच्छा.
कफ और पित्त, इनसे ही कैंसर का फॉर्मेशन होता है.
म्यूकस टाइप.
हाँ, एक अग्नि और म्यूकस ऐसे समझ लेते हैं इसे. जिसके अंदर कभी दबा हुआ कोई क्रोध ही नहीं है, उसमें कैंसर हो ही नहीं सकता. जिसके अंदर मैं ही नहीं है, अहम ही नहीं है, कैंसर कहां से आएगा?
एग्जैक्टली.
कैंसर आपके मैं पे तो खड़ा होता है. नंबर थ्री जुपिटर, बहुत पावरफुल नंबर है. संतान लेते हैं, खुशियां लेते हैं, लाइफ में हैप्पीनेस लेते हैं, प्रॉस्पेरिटी लेते हैं. बट कैंसर भी जुपिटर से होता है. और जुपिटेरियंस को कैंसर का एक बहुत बड़ा फिनोमेना फेस करना पड़ता है. हमने एस्ट्रोलॉजी में कम से कम 100-150 चार्ट्स पे इसका काम करके देखा कि जुपिटर और कैंसर का एक बहुत डीप रिलेशन है. सैटर्न, जुपिटर, इनका कार्मिक प्लैनेट्स, इनका बहुत आपस में एक संबंध होता है. व्हेन दे क्रिएट सम डिसीज, जब कोई डिसीज बननी होती है. तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप एक अपना लाइफस्टाइल सेट कर लेंगे, डिफाइंड लाइफस्टाइल में जिएंगे, और वो अर्ली हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, आपको ऑलरेडी एक इम्पैक्ट मिलेगा. मैंने कई सारे डिप्रेशन के पेशेंट देखे. डिप्रेशन के पेशेंट को मैंने थोड़े दिन के लिए बोला कि एक बार उठ के देखो, मॉर्निंग में जाग के देखो. कहते क्या करूं सर मॉर्निंग में उठ के?
बिकॉज डिप्रेशन इज रिलेटेड टू लेट स्लीपिंग.
डिप्रेशन इज रिलेटेड टू स्टेग्नेंसी.
अच्छा.
आपकी लाइफ में स्टेग्नेंसी हटेगी ना, डिप्रेशन और एंग्जाइटी कभी आ ही नहीं सकता. आपका मूवमेंट होना चाहिए. अब मेरे पास कैंसर का पेशेंट आया या कोई डिप्रेशन का पेशेंट आया, कहता सर सुबह सुबह तो आपने उठा दिया, अब मैं सारा दिन करूं क्या? मेरा खाली ये पर्पज नहीं कि उसे सुबह उठाना था. मैंने कहा भाई भगवत गीता उठा, पढ़ना शुरू कर. कहते भगवत गीता तो समझ में नहीं आती. मैं कहा एक काम कर, मेरी बात मानेगा? कहता हाँ. मैं कहा नोट कर वर्ड बाय वर्ड, पूरी गीता तूने नोट डाउन करनी है.
अच्छा.
कहता सर ये क्या वेस्टेज का टाइम बता रहे हो, या टाइम हमारे खोटी करवा रहे हो? मैं कहा एक काम कर दे, अगर हो जाए तो कर ले, नहीं तो रहने दे, डिप्रेशन से बाहर आना है तो. उसने मेरी बात मानकर 15-20 दिन काम करना शुरू करा. पहली बात तो भगवत गीता एक ऐसी चीज है ना, जैसे अगर आप लिख भी रहे हो ना, तो उसकी एसेंस आपको सुधार देगी. सेकंड चीज, उसकी लाइफ में काम आना शुरू गया. वर्कलेसनेस थी, अब वर्कफुल हो गया. घर के अंदर सब लोग कहते हैं कि यार क्या इंसान है, सुबह सुबह 3 बजे उठ के गीता लिख रहा है. एक ऑरा में एनहेंसमेंट होनी शुरू हुई. 15 दिन के अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया.
बिकॉज गीता इज सेड टू बी लाइफ मैनुअल ओनली.
एक्चुअली ये लाइफ मैनुअल समझने के बाद है ना. अज्ञानी के लिए तो सिर्फ किताब है. अभी वो अज्ञानी था, तो गीता मैंने ऐसे टॉनिक की तरह पकड़ा दी. अब टॉनिक आप कोई काम कर रहे हो, उसके अंदर होते 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 आप काम को समझना शुरू कर देते हो. पहले तो बच्चा स्कूल जाता है कि मजबूरी है जाना पड़ेगा, माला फेरने वाला कहता है मजबूरी है माला जपनी पड़ेगी, पर धीरे धीरे माला समझ में आती है, आपकी सांसों से कनेक्ट हो जाती है. यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, द कंसेप्ट बिहाइंड द माला, फिर यू गेट इनटू दैट सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट में घुसना शुरू करते हो. तो उसे फिर गीता समझ में आनी शुरू हुई, और जैसे ही वो काम करना शुरू करा, डिप्रेशन कहां गया पता नहीं,
गायब हो चुका है.
कैंसर के पेशेंट को मैंने गीता लिखने को बोला, रामायण की चौपाइयां लिखने को बोला, क्योंकि इनमें ऐसी प्रिमिटिव वाइब्रेशन है जो आपकी ऑटोमेटिक हीलिंग करती है.
बट रामायण से मुझे याद है, लोग ज्यादातर सुंदर कांड को बहुत सुनते हैं, ऐसे क्यों?
एक्चुअली क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर फेज की एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं. वहां पर वाइब्रेशन सबसे हाईएस्ट लगती है उन्हें. देखिए वैसे ऐसा कोई कांड नहीं है जिसके अंदर कोई एनर्जी ब्लिसफुल ना हो, पर ऐसा कहते हैं कि सुंदर कांड के अंदर सबसे ब्लिसफुल एनर्जी मिलती है.
सुंदर एनर्जी.
एग्जैक्टली. और वो ब्यूटिफिकेशन करती है, एक बेसिक कंसेप्ट है. दैट्स व्हाई दे डू ऑल दिस थिंग्स. अदरवाइज क्या है कि आप पूरी रामायण को अगर लिखने चलोगे ना, आपके मन में एक शांति का भाव तो अपने आप ही आता जाएगा. चाहे सुंदरकांड लो, चाहे लंका कांड लो, किष्किंधा कांड लो, कोई सा कांड उठा लो. पहले लाइफ का सारा फोकस ना कैंसर पे. मैंने क्लाइंट का सारा फोकस शुरू करा दिया भगवत गीता पे, या किसी रामायण पे, या किसी और चीज पे. आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है ना. दिमाग का काम है सोचना. आपको मैंने सोचने के लिए कुछ और दे दिया. जुपिटेरियंस के पास में ये पावर थोड़ी एक्स्ट्रा होती है कि दे थिंक, दे कीप ऑन थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, ओवर थिंकिंग आती है. और नंबर के पहला वाला और बाद वाला भी क्वालिटी शेयर करते हैं, तो नंबर 4 में भी जाती है क्वालिटी, नंबर 2 में भी जाती है. तो दैट्स व्हाई यू नीड टू असाइन सम टास्क टू देम, कि उनको कोई टास्क पकड़ा दो, कुछ भी एक चीज पकड़ा दो कि इस पे काम करना है. नेक्स्ट नंबर राहु. राहु वाले बड़े परेशान रहते हैं कि हमारे पास तो राहु मिल गया सर, जिंदगी खराब हो गई हमारी. राहु एक स्ट्रेंथ का नंबर है, राहु एक ग्राउंड वर्क का नंबर है, पिरामिड का बेस है. अगर ये बेस बन गया ना, बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी.
जिसको राहु तारे उसको कौन मारे.
एग्जैक्टली. राहु सबसे बड़ा राक्षस है, बट राहु के अंदर ऊर्जा इतनी है जितनी बाकी नंबर्स में शायद नहीं हो. विगर का नंबर है, तेज, बहुत तेज है, हर वक्त आक्रामक है, जल्दबाजी में काम करता है. अगर आपका नंबर राहु है डेट में या टोटल डेट ऑफ बर्थ के अंदर, आपको अपनी लाइफ में तेजी से काम करने भी आने चाहिए. नंबर आपका पर्पस दिखा रहा है, आपको पर्पस और नंबर को रिलेट करना होगा,
वो स्पीड पकड़ना चाहिए.
मान लीजिए जैसे किसी का नंबर है 14, तो उसके पास में पावर ऑफ सन है और पावर ऑफ राहु है. अब इन दोनों का जो ताकत है उसे लाइफ में वो गेन करना ही पड़ेगा, और अल्टीमेटली उसका पर्पस वही है. बट क्या होता है कि लाइफ में हम ना तो नंबर कंसिडर करते ना चार्ट को, और कहने वालों ने कह दिया है कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो, ये मूर्ख बनाने बैठे हैं. ये भी बहुत प्रोलिफरेटेड है. अभी इस वीडियो को सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा तो होता नहीं, वैसा तो होता नहीं है. जिन्हें चेंज लाना है ना वो चेंज ला रहे हैं. अगर ये साइंस मिथ्या होती ना, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे साइंस का यूज कर रहे थे?
जेपी मॉर्गन ने बोला था आई थिंक सो, कि ओनली बिलियनर्स यूज एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी.
व्हाई? मेरा क्वेश्चन है व्हाई, कि ऐसा क्यों है कि इतने बड़े बड़े लोग जो जिनके पास पावर है. अभी एक इवेंट हुआ हमारे देश के अंदर, राम का एक नाम लिया गया, उसके लिए भी एस्ट्रोलॉजी कंसिडर की गई. क्यों? वो तो पावरफुल इवेंट था, राम का नाम ही चल रहा है, अल्टीमेट वही है. उसके लिए क्यों हम ना एक मुहूर्त निकाल रहे हैं, इस मुहूर्त के अंदर इसी चीज के साथ में हम जोड़ रहे हैं उसे. आपके पर्पस क्या है, आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो नहीं, या लाइफ को वैसे ही जीना चाहते हो जैसे है? एक बेस्ट टाइम आपको बेस्ट इवेंट तक ले आ सकता है, एक नॉर्मल टाइम आपको नॉर्मल इवेंट पे लेके जाएगा, एक एवरेज टाइम एवरेज इवेंट पे लेके जाएगा. और इसको पहले हमें पढ़ना चाहिए ना. हम कहते हैं हम चले जाएंगे एस्ट्रोलॉजर के पास, वो बताएगा ना तुम्हें पढ़ने में क्या मृत्यु आ रही है. तुम भी तो एजुकेट लिटरेट हो सकते हो ना. तो मेरा प्रश्न सबसे ये होता है कि व्हाई डोंट यू बिकम योर ओन थेरेपिस्ट, व्हाई डोंट यू बिकम योर ओन डॉक्टर. आप हर बात के लिए बाहर क्यों निकल रहे हो? बट अंदर का जो राहु होता है ना, वो दिमाग को भ्रमित कर देता है. राहु वाला इंसान क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बकवास है. अंदर का राहु डेली चिल्लाता है, आपके भी मेरे भी. एक जब थॉट आता है तो साथ साथ एक एंटी थॉट भी आता है. राहु एंटी थॉट है. आपका राहु डिसबिलीफ भी लेके आता है. बट आपने अगर उस एंटी थॉट को, उस डीमन को ट्रेन कर दिया, तो वो एक्चुअली में आपका ट्रस्ट भी है, फेथ भी है.
अच्छा, वो बहुत पॉजिटिव टर्न.
एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ी पावर को ढंग से डिसिप्लिन में ट्रेन कर देते हो ना, तो डीमन को आपने हार्नेस कर लिया एक तरह से. और जब वो हार्नेस होके आपके साथ जुड़ गया ना, इट्स लाइक अ प्रोपेलर. आपने हायाबूसा बाइक का नाम सुना होगा, उसमें एक बटन दबता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का सिलेंडर रिलीज करता है कुछ प्रेशर, और भागती है बाइक. राहु ये बूस्टर है. पर बूस्टर को हैंडल करना कब आएगा? जब नॉर्मल तो चलाओ पहले. जिसे 40-60 की स्पीड पे डर लगता है, उसे बूस्टर पे तो बहुत डर लगेगा.
पहले एक्टिवा चलाओ.
पहले एक्टिवा चलाओ, स्कूटी चलाओ पहले छोटी सी. जब तुमने साइकिल भी नहीं चलाई तो तुम्हें बूस्टर क्या कर लेगा? तो राहु को हैंडल करने के लिए अपनी तेजी को काबू में पाना होता पहले. मेडिटेशन जो लोग करते हैं वो अपने राहु को काबू कर सकते हैं. आप नॉर्मल स्पीड पे भी नहीं चल पा रहे तो राहु आपका क्या ही कर देगा? लेके बैठे हो सिर्फ चार अंक को, और कहते रहोगे बहुत टेंशन देता है राहु. हाँ, राहु प्रेशर देता है, क्योंकि जाना था तेजी से. लाइफ में तेज चेंज आएंगे आपके सारे, और आप कैसे हो? स्लो. तो राहु को तो आपने एक्टिवेट ही नहीं किया ना,
तो गड़बड़ हो सकती है.
एग्जैक्टली, और नंबर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है. आई एम कमिंग टू द टॉपिक. हर नंबर का ना एक कर्म है.
अच्छा.
वो कर्म आपको करना होगा.
अच्छा.
आप लाइफ में इतना सेफ खेल रहे थे कि जब जब मुसीबत आई आपने कोई एक क्रच या बैसाखी पकड़ ली,
सपोर्ट बेसिकली,
सपोर्ट सिस्टम पकड़ लिया, किसी के ऊपर आश्रित हो गए, आधारित हो गए. कब तक चलेगी ऐसी लाइफ शॉर्टकट वाली? कभी ना कोई तो पकड़ में आओगे. और इंसान की फितरत होती है बच बच के निकलने की. वो जहां डिफिकल्टी आते नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, और बड़ा जबरदस्त लॉजिक देगा, क्योंकि ऐसा ऐसा ऐसा. और जितने भी फेल्योर वाले लोग हैं, I'm sorry, ध्यान से देखना अपनी लाइफ को, कि आपके पास लॉजिक बड़े तगड़े होंगे. जो विनर्स है ना, उनके पास लॉजिक फ्लेक्सिबिलिटी वाले होते हैं. ट्राई करते हैं, लेट्स गिव इट अ शॉट. आप कभी विनर्स से मिलके देखो, इंडस्ट्री से मिलके देखो, दे आर नॉट स्टैग्नेंट, दे आर मूविंग.
मुझे आज ही किसी ने तो बोला था, कुछ तो टॉपिक चल रहा था
जी,
तो बोलते हैं कि भाई तेरे थॉट से मेरे को डर लगता है. इतना पॉजिटिव कैसे बोल लेता है? तो बोलो मालूम नहीं आ जाते हैं.
मुझे तो डेली कहते हैं सर आप इतना मेडिटेशन करते हो ना इसीलिए पॉजिटिव हो, आपको क्या पता लाइफ में खराबी क्या होती है. मैंने कहा बेटा क्या हुआ था तुम्हें? कहते सर पेट में दर्द रहता है मेरे. मैं आपसे शेयर करता हूँ, मैं पैरालिसिस में था कुछ साल पहले, मेरे को स्लिप डिस्क था और मैं पैरालाइज था, और उस पैरालाइज स्टेट में सबने हाथ खड़े कर लिए थे कि तुझे कुछ नहीं हो पाएगा, तू ऐसा ही रहेगा एंड यू विल बी अ कैबेज. वो पैरालिसिस टूटा, मैं उससे बाहर आया. अभी कुछ दिन पहले मेरी बॉडी में एक दिक्कत आई थी, मैंने उसके लिए स्टीरॉइड्स लेने पड़ गए, मेरी आई साइट चली गई.
कौन सी वाली?
वाइजलून, मेरे ख्याल से शायद स्टीरॉइड दिया था मुझे, हाँ. वाइजलून 40, हाँ. और उससे मेरी आई साइट चली गई थी, मेरे को मुश्किल से कुछ फीट दिखाई दे रहा था,
दोनों
आई आंखों में. और मैं ड्राइव कर रहा था, मुझे पता कैसे लगा, मैं बाइक ड्राइव कर रहा था, मेरी वाइफ पीछे बैठी थी. जब मैं मेन रोड पे आया, मुझे क्योंकि गली का तो पता होता है, अपने लेन का पता होता है आप कहाँ कहाँ से ड्राइव कर रहे हो. जब मैं मेन रोड पे आया, मुझे दिखना बंद हो रहा है, मैं कह रहा हूँ मुझे ब्लरिश दिख रहा है, मैं आंखों में पानी मार रहा हूँ, मेरे को लगा शायद कोई दिक्कत हो गई है.
अच्छा,
डॉक्टर ने एक टाइम ड्यूरेशन दिया था मुझे कि इतने दिन तक वाइजोलोन लेनी है आपने, मैंने 5 दिन लेके छोड़ दी. आई साइड वापस रिकवर होने शुरू हो गई, मैंने हीलिंग करी, मैं वापस मेडिटेशन स्टेट में गया, वेट पुट ऑन हो चुका है, दोबारा लड़ रहा हूं, हफिंग पफिंग स्टार्ट हो गई, फिर से एक्टिव कर अपने आपको. डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको 15-20 दिन लेनी होगी, मैंने खाली 5 दिन ली, क्योंकि अंदर से आत्मज्ञान आया, आवाज आई कि नहीं इससे ऊपर मत ले, दिक्कत होने वाली है. ठीक कर लिया. मैं ये नहीं कहता मेडिकल साइंस गलत है, बट इंसान तो वो भी है, डॉक्टर भी तो इंसान ही, गलती वो भी कर सकता है. और आजकल ओवर मेडिकेशन के कितने केसेस नहीं होते, पर बात यह कि अगर हम अपनी कॉमन सेंस भी यूज ना करें अपनी बॉडी को, मैं खुद समझता हूं सबसे बेहतर मैं समझता हूं अपनी बॉडी को, और मैंने इतना ध्यान करा उसका फायदा क्या, नहीं तो मेरा राहु मुझे भ्रमित कैसे कर सकता है. आप यदि राहु के आधारित पे होके जिएंगे ना, आप दूसरों की सलाह पर चलते रहते हैं. जितने इवन नंबर वाले लोग हैं ना, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, वो दूसरों पे आधारित बहुत होते हैं, वो अपने पे बिलीव नहीं करते. ऑड नंबर वाले किसी पे बिलीव नहीं करते, उनका लॉजिक ही बहुत हार्ड होता है. तो दोनों को बैलेंसिंग ऐसे मिलनी चाहिए. राहु वाले लोगों में ताकत बड़ी होती है, कुछ भी कहला दो, कुछ भी कहीं भी बुलवा दो, बिंदास बिना फिल्टर के सब कुछ बोल जाएंगे. कहना पड़ता है महाराज की इतना साफ मत बोलो, इतने साफ के बाद तुम कॉन्ट्रोवर्सी खड़े करने वाले. तो जब किसी का राहु बहुत पहलवान होता है, स्ट्रांग पोजिशन में होता है, तो इंसान के फिल्टर खराब होते हैं, और दूसरे लोग इसे हथियार की तरह पे कहीं भी छोड़ देते हैं कि टॉमी शू. और टॉमी शू कर गया, वो काट के आ गया, और राहु के साथ क्या होता है, नॉर्मली राहु बहुत डोसाइल प्लेनेट है, आराम से रहने वाला चीज है कि ठीक है, बट जब लालच आता है, जब प्रेशर आता है, तो राहु इज अ नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस.
अच्छा,
तो ये लीप्स ले लेता है.
राहु के मैनिफेस्टेशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, सुने मैंने.
उसका एक वर्बल जो नरेशन होता है, राहु का मतलब था हुंकार. रा वर्ड जहां भी आएगा ना, इसका मतलब प्रचंड. राम, रावण, राहु, इसका मतलब ह्यूज. और हु का मतलब हुंकार. तो जिसकी हुंकार प्रचंड हो जाती ना, जिसका अफर्मेशन का थ्रो बड़ा प्रचंड है, दैट्स राहु. तो राहु वालों को
अमित भड़ाना की एक इंटरव्यू देखी थी, उसने बोला था उसका राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है.
Exactly.
वैसे बोलते बोलते अगर कुछ बोल गया और उसका ध्यान नहीं रहेगा तो वो हो जाता है.
और राहु का प्लस राहु मतलब 4+4 = 8, इनका भी अफर्मेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. नंबर 8 वालों को शनि का नंबर कहते हैं. इनको भी बोलते हैं अपने अफर्मेशन बोलते हो ध्यान में रहना, क्योंकि तुम जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा. वाक सिद्धि कहते हैं इस विद्या को, कि आपकी वाक सिद्धि होती है बहुत बार.
मैं 8 है.
Exactly. So you have to speak very carefully. कि जो बोलना है और नेगेटिव बोलोगे जल्दी प्रैक्टिकल हो जाएगा.
हाँ, मैंने देखा है, बहुत बार देखा.
आप किसी को ब्लेस करोगे शायद थोड़ी देर में ब्लेसिंग हो जाए, बट आप किसी को कर्स कर दोगे इमीडिएट इंपैक्ट आएगा और आपको खुद रिग्रेट होगा कि मैंने क्या कर दिया,
गलती से.
दैट्स अल्टीमेट पावर. सो आपका अफर्मेशन पूरा यूनिवर्सल अफर्मेशन आपके पास में, सोच समझ के बोलो. राहु वालों को हमेशा कहते हैं मंत्र जाप करो, मुंह से सही वर्ड का उच्चारण करो, नेगेटिव निकालो मत. दिस नंबर 4. नंबर 5, 4 पहले हैं इससे, 4 बाद में, तो दोनों तरफ एक तरह से राहुओं से घिरा हुआ है. ऐसा कह सकते हैं. तो जितनी स्ट्रेंथ दोनों तरफ है इसकी, वो प्रैक्टिकलिटी लेके आती है कि मेरे आसपास तो भाई सब खड़े हैं और बराबर बराबर ही फोर्सेस हैं. अपनी लाइफ में बहुत चमत्कारी शक्तियां रखते हैं. मैथमेटिशियन कहते हैं, पॉलिटिशियन कहते हैं इनको.
फाइव नंबर्स.
इनके पास बुद्धि बड़ी तेज होती है.
अच्छा,
दुनिया को खेलना, दुनिया से प्ले करना, लोगों को हर्ट करना, लोगों के दिमाग से खेलना, मेंटलिज्म का आर्ट बड़ा स्ट्रांग होता है 5 नंबर में. मैं फिर से बताऊं सभी व्यूअर्स को, नंबर एक्टिवेट होने के बाद में अपने करेक्टर शो करता है. अगर आप घर के अंदर कैद करके कहीं कोने में सेफ साइड में बैठे हुए हो, आप वो कर रहे हो जो कहीं आपको दिया गया था, तो आपने नंबर एक्टिवेट नहीं करा. आप जब लाइफ को एक्सप्लोर करोगे, अपने आप को एक्सप्लॉइट करोगे, लाइफ को जाके लिव करोगे, तो नंबर आपके एक्टिवेट होते हैं। नहीं तो सेफ खेलने वालों के नंबर पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होते, पार्शियल एक्टिवेशन होता है, या घर के जो बाकी लोग हैं उनका लक यूज कर रहे हो तक कि दादा ने बिजनेस लगाया, बेटे ने करना शुरू करा, फिर पोते ने करना शुरू करा, सारी फैमिली कर रही है।
तो भाई लास्ट टाइम में हम लोग ने डिस्कस किया था कि नंबर्स आर आल्सो फ्रीक्वेंसी।
एग्जैक्टली, फ्रीक्वेंसी किसी ने क्रिएट कर दी, दादा ने क्रिएट कर दी, अब सारे उस फ्रीक्वेंसी को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ है? हो सकता है लक हो सकता है मिसलक हो। कई बार लोगों ने हमसे कहा कि हमारे दादा की मृत्यु हो गई, उसके बाद सारा बिजनेस खराब हो गया। दादा ने शुरू किया था ना,
मेक सेंस,
वाइब्रेशन सेटल हो गई ना उनके जाते ही। अब आपकी वाइब्रेशन इनवोक कर दो, व्हाई आर यू नॉट पुटिंग द एफर्ट। तो कहते हैं सर 54 इयर्स की, 60 इयर्स की एज में अब वाइब्रेशन करें क्रिएट। मैं कहा एक्चुअली ये बात तो इनसिक्योरिटी देती है, आपको क्रिएट बहुत पहले करना चाहिए था। तो अभी भी टेक्निक्स हैं, अभी भी ध्यान में टेक्निक है, बिकॉज आपको अपना कर्म किसी भी एज में करना पड़ सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मरकरी हमें यही सिखाता है कि हमारी बुद्धि हमें यही सिखाती है कि आप अपने राइट टाइम पर राइट काम करें। लोग बार बार कहते हैं कि मेरी उम्र बढ़ गई, मेरी हालत ऐसी नहीं है, मेरी अवस्था ऐसी नहीं है,
इनकेपेबल हूं।
एग्जैक्टली, मुझे सही गुरु नहीं मिला, राइट अपॉर्चुनिटी मिली। दुनिया में आप ये समझो कि ब्रह्मांड में हमारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके आसपास के लोग बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि अगर ये लोग जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये गलत करेंगे तो शायद गलत नहीं होगा, बट मम्मी गलत कर दें, पापा गलत कर दें, पति गलत कर दें, तो लाइफ खराब हो सकती है। मतलब इंसान फिजिकल पे इतना आधारित है कि वो इन यूनिवर्सल मैग्नेटिक पावर्स को समझ ही नहीं रहा है। आपके साथ वाले लोग कुछ भी करते जाएं, अगर आप डिटरमाइंड है ना, आप अपने ईश्वर बिलीव करते हैं, अपनी लाइफ को गड्ढे में से कभी भी निकाल सकते हैं, आपकी एज कुछ भी हो।
एग्जैक्टली,
कैंसर का फोर्थ स्टेज का पेशेंट था मेरे पास में, डॉक्टर ने 2 वीक का टाइम दिया था, 7 साल तक नहीं हिला। सिर्फ एक डिटरमिनेशन था, सर आप मिल गए हो ना, सब सेट हो जाएगा,
हो जाएगा।
मैं कहा बेटा मेरे पे इतना भरोसा मत कर, ये सेट तेरी वैसे हो रहा है। कहता सर मुझे बिलीफ है, मेरे मत तोड़ो। कहता मुझे आप पे बिलीफ है, और खुद हंसता था डेली, कहता हे 2 हफ्ते + 1 डे, 2 हफ्ते + 1 वीक, ऐसे ऐसे मजाक करता था मुझसे। कहता सर यमराज 3 हफ्ते नहीं आया, यमराज 2 महीने नहीं आया। मैं हंसता था उसके साथ में, मैं कहा यार ये सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा हो सकता है किसी का। एक वो इंसान जिसे डॉक्टर बोल चुका है कि 2 वीक के बाद तू मरने वाला है, पर उसने अपनी बुद्धि, अपने विवेक से उस चीज को बाहर निकाला, अपने खुद के मरकरी से। मरकरी का मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी होती है। आप अपनी सेंस ऑफ ट्यूमर को सेंस ऑफ ह्यूमर में कन्वर्ट कर सकते हो।
अरे नाइस लाइन।
पर लोग क्या होते हैं, अपनी सेंसेस से अपने अंदर ट्यूमर क्रिएट कर सकते हैं, बजाय कि हंस के ह्यूमर क्रिएट करने के।
और वो सबकॉन्शियसली हो जाता है।
एग्जैक्टली, आप अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर रहे ना, जैसे आप सबकॉन्शियसली कह रहे हो, एक्चुअली इट्स अ इननेट बिहेवियर, इट्स अ डीप बिहेवियर, वो गहरा बिहेवियर है। आप ऑब्जर्व तो करो, कर क्या रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, आप अपनी डीपेस्ट स्टेट में हो, आप फुली इमोशनल हो, फुली लस्टियस हो, फुली एकदम पेन में हो। एक बार अपने आप को ऑब्जर्व करके देखो सही, कि अगर मैं पेन में हूं तो मैं कैसा दिख रहा हूं। आप बहुत पेन में हो, बहुत जोर से रो रहे हो, 2 मिनट शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आपको आंसू नहीं आएंगे। आपके डिजायर्स बहुत बढ़े हुए हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रोने का मन कर रहा है, शीशे को फेस तो करो, अपने आप को देखो से कैसे दिखते हो। व्हेन यू एड्रेस योर इमोशंस, द इमोशन बिकम फ्लैट। लोग क्या होते हैं, उस इमोशन के पीक को एंजॉय करते हैं, उस इमोशन की स्टेट में रहना चाहते हैं। आप मिजरी में रहना चाहते हो, ये चॉइस आपकी है। ब्रेक करने वाला उस पीक को भी तोड़ देता है।
सो बेसिकली जो मिजरी एंजॉय करते हैं वो कोर्टिसोल लेवल्स एंजॉय करते हैं,
वो अपने एंडोर्फिंस रिलीज नहीं करना चाह रहे, वो अपना कोर्टिसोल लेवल पे खेल रहे हैं सारे सारे। अगर एंडोर्फिंस रिलीज कर दी, हैप्पी हॉर्मोन्स, आपको ठीक हो जाओगे, रिकवरी हो जाएगी। मैंने किसी कैंसर के पेशेंट को ठीक नहीं करा, एनर्जी ने किया होगा, या उस पेशेंट ने खुद ही ठीक किया होगा अपने आप को। वो डेली के डेली अपना काम कर रहा है, खुद अपनी हीलिंग कर रहा है और वो ठीक हो रहा है। ऐसा दिखता होगा कि हम लोग काम करते हैं, एनर्जी काम करती है, एनर्जी काम करती है। हम लोग बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि भाई करने वाला डूअर वो है, मैं सिर्फ अपना एक कैटलिस्ट हूं। पेशेंट अपने कॉन्फिडेंस से पहले ठीक होता है और अपनी डलनेस से पहले मरता है। लोग हमारे पास पंचायत लेके आते हैं पूरे घर की, ये मेरी नहीं सुनता, ये मेरी नहीं सुनता, अब बताओ आप ऐसा एस्ट्रोलॉजर हमें क्या करना चाहिए। मैं कहा देखो मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, काउंसलर नहीं, और तुम्हारी फैमिली काउंसलिंग तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि तुम सारे लालची हो। अब बुरा मानते हैं कि सर आप इतना सत्य क्यों बोल जाते हो। मरकरी हमें ना बहुत इंटेलिजेंस देता है, हमें बचने के एस्केप रूट्स देता है और बार बार ना बच के भागने के रास्ते भी देता है। पर अगर मरकरी को हम अपने कंट्रोल में ले लें तो जिंदगी में हर लॉजिक को जी सकते हैं।
और कैसे लेते हैं कंट्रोल में?
आपको इमोशन क्रिएट हुआ, आप एक स्टेट में थे, आप डलनेस फील कर रहे हो, डिप्रेशन में फील कर रहे हो कि हाईली डिप्रेस स्टेट है, एक बार बस बहुत हिम्मत से क्वेश्चन कर लेना, व्हाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं, इज दिस मी अ कर्म?
दैट्स ट्रू।
अपने आप को क्वेश्चन तो करो ना, हम बेसिकली अपने आप से क्वेश्चन ही तो नहीं कर रहे डेली,
सामने मतलब खुद को सामने खड़ा करके।
एग्जैक्टली, यू मेक योरसेल्फ प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू कि दिस इज द पर्सन, आस्क द क्वेश्चन, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, लाइफ में स्वा चेंज लाओगे? तुम्हें बनना है बहुत महान, तुमसे गाल की फुंसी फोड़ी नहीं जा रही। एक सिंपल सी बात है, लॉजिक सी बात है, मैं कहता हूं लोगों को कि एक बार रिस्क तो लो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आओ, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, जिंदगी के सपने कैसे पूरे होंगे सर? वाह मेरे शेर, कितने इंटेलिजेंट हो। दिस नोन एज कंफर्ट जोन। आपका मरकरी आपको उस कंफर्ट जोन में धकेलता है, आपको कोई बाहर नहीं आने देता। मरकरी है राजकुमार, मरकरी है नंबर 5। बुध को, राजकुमार को राजा बनना है तो राजा बनने के लिए ग्राफ को रेज करना होता है। मरकरी को लाइफ में कभी स्टेग्नेंट नहीं होना चाहिए, मरकरी को अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। मैं आपके पॉडकास्ट में आ रहा था, मैं एकदम से ना डल हो रहा था, पता नहीं क्यों मेरा मूड एकदम डाउन जा रहा था। मेरे पास कुछ गानों की लिस्ट है, मैंने कानों में अपना ये पॉड लगाए और गाने सुनने शुरू कर दिए। आई नो हाउ टू कंट्रोल माय मरकरी। मैं कहा मुझे आज ना इस जगह बैठकर पूरा एंजॉय करना है इस मोमेंट को। पॉडकास्ट कैसा जाएगा मुझे परवाही नहीं है,
कर्म करते हैं,
मुझे कर्म करने हैं। और आप और मैं जब मिलके दोनों कर्म करेंगे ना, इम्पैक्ट तो आएगा, पब्लिक एंजॉय करेगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। चार लोग भी एंजॉय करेंगे ना भाई, चार लोगों तक बात पहुंच गई,
सीख तो रहे कोई तो।
40 लाख तक ना बात जो पहुंचनी होगी पहुंच जाएगी वहां पे, तो टेंशन नहीं है मुझे अपने, मेरे साथ क्या होगा। और ये कॉन्फिडेंस ना मेरे में से आप तक भी पहुंचेगा, हमारे दोनों से व्यूअर्स तक भी पहुंचेगा कि आप अपने मरकरी को ट्रेन करना सीखिए।
बराबर,
कुछ चीजें मुझे नहीं करनी। मुझसे लोग बातें कर रहे थे, मैं आने से पहले किससे बात कर रहा था, मुझे उनकी एनर्जी बहुत डिप्रेसिव लगी, मैंने फोन रख दिया, मैं किससे बात नहीं करता, अपने जोन में चला गया, मैं ध्यान में गया, कुछ सोचा, कुछ समझा, इवेल्युएट करा, अपनी पावर्स को इन्वोक करा, आ गया वापस। देरी कितनी लगनी है? मरकरी को तोड़ना ऐसा ही होता है, आप अपने आप को एड्रेस करो बार बार। डिप्रेसिव स्टेट में हो ना, एक बार पूछो डिप्रेशन है आपको क्या, या खुद क्रिएट कर रहे हो? वो विशेष साइकिल टूट जाएगा।
बट बिकॉज मैंने देखा डिप्रेशन खुद ही क्रिएट करते हैं, इट डजंट कम्स,
ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। और लोग इस बात को सुन के ना बहुत अगेंस्ट होते हैं, यू डोंट नो व्हाट आई फील लाइक, डिप्रेसिव हर कोई होता है, हमें भी डिप्रेशन रहा है।
बट फीलिंग इज लाइक वी कैन कंट्रोल फीलिंग 100%।
मुझे जब पैरालिसिस था बॉडी में, मुझे बहुत डिप्रेसिव फील होता था। मेरे फादर ने एक वर्ड दिया था छोटा सा, मैंने कई बार जिक्र किया इसका, पापा कहते थे तू स्लीप वॉक करता है, तुझे दिन में पता है कि तेरे पैरालिसिस है, तुझे स्लीप वॉक करते हो कैसे नहीं पता तुझे पैरालिसिस है? मैं कहा हाँ यार, रात को चल रहा हूं, सुबह नहीं चल पा रहा हूं, ये कौन सा लॉजिक चल रहा है जिंदगी का? एंड देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग समथिंग कि पैर हिल नहीं रहा खुद तो मैं हिला लेता हूं ना। मैं अपनी पैंट पकड़ के पैर को ऐसे से उठाता था अपने, भाई ये वॉलंटरी नहीं मूव कर रहा, मैं इनवॉलंटरी मूवमेंट करा दूंगा ना इससे। तो मैंने पैर को हिलाना शुरू करा, पैर का काम है हिलना, नर्व कंडक्शन स्टार्ट हो गया, नर्व कंडक्ट हो गई, पहले मूवमेंट पार्शल थी फिर फुल आनी शुरू हो गई, फिर मैंने स्क्वाट्स भी लगाए।
आपने बोला था मुझे स्क्वाट्स भी लगाए थे।
तो स्क्वाटिंग, मसल बिल्डिंग सब करा, बॉडी बिल्डिंग करा इसी टांग के साथ, स्लिप डिस्क के साथ, दो स्लिप डिस्क हैं, एक स्पाइनल फ्रैक्चर है, कोई दिक्कत नहीं होती, बॉडी अपने आप को हील करती है, पहले माइंड तो हील कर लो। मरकरी को क्वेश्चनिंग करो, अपने माइंड को क्वेश्चनिंग करो कि क्या मैं इतना ही हूं? किससे अब आप कह दो कि आपके अकाउंट में 8,000 करोड़ रुपए आ गए, तो पहला जेस्चर क्या होगा? हे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अरे भाई तुमने अपनी ग्रोथ को ही लॉजिक में ले आए तो फिर तुम कौन नहीं करेगा? अंबानी से कहोगे आपके अकाउंट में 8,000 करोड़ आ गए, तो नहीं 10,000 करोड़ चाहिए। उसका एटीट्यूड है, तभी लाइफ उसे दे रही है, उसने चाहा, उसे मिल रहा है।
आप फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन हो गए।
एग्जैक्टली, आप इतना ही खेलना चाहते हो ना, लाइफ आपको इतना रखेगी। जिस दिन आप इतना खेलना चाहोगे ना, माइंड के अंदर आपके थॉट आ गए कि मुझे चाहिए भैया प्लेन में उड़ना, अपने पर्सनल मेरा ए जेट होना चाहिए, तो लाइफ घुमा फिरा के ए जेट के मौके बनाएगी। माइंड कोशिश करेगा कि अब इसे जेट प्लेन चाहिए, पर उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, कमाई भी करनी पड़ेगी. आप बैठे बैठे कहोगे मुझे तो जेट प्लेन चाहिए, ये मरकरी है.
मुझे कुछ तो याद है.
यू आर एक्टिंग वेरी स्मार्ट नाउ. तो आप बैठे बैठे कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि ये एक शेर बैठा है उसके मुंह में हिरन आ रहा है. शेर को जाकर हिरन का शिकार करना पड़ेगा. तो मरकरी को हम ऐसी ट्रेन करते हैं. एड्रेसिंग द मरकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू डोंट हैव टू बी स्टैग्नेंट, यू डोंट हैव टू बी स्टिल. ब्रेक द स्टिलनेस, ब्रेक द स्टैग्नेंसी, दैट्स नंबर. और नंबर पांच, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो किसी तरीके से भी, 14 से क्रिएट हो रहा हो, 23 से क्रिएट हो रहा हो,
सोलो हो,
करो. आपका मरकरी है, या तो थक जाओगे या मूव करोगे. मरकरी नॉन रिस्पॉन्सिबल नंबर भी होता है. ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी तो मूड खराब हो जाएगा.
हाथ उठा लेते हैं.
एग्जैक्टली, छोटा बच्चा है.
अच्छा,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे थोड़ी छोटी डालो. अगर आपके पास मरकरी कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो कि मुझे देश में परिवर्तन लाना है, छोटे छोटे एरिया, मुझे पहले घर में परिवर्तन लाना है, मुझे किचन में लाना
है,
अपने आसपास, क्योंकि हम खुद में बहुत बाद में ला पाते हैं. पहले कहो मुझे अपने रूम का सही करना है, क्योंकि आसान है. पहले रूम से स्टार्ट करो, फिर घर में धीरे धीरे स्टार्ट करो, फिर एक दिन मेडिटेशन करने का मन करेगा, कहो मुझे अपनी बॉडी में परिवर्तन लाना है, फिर देश में परिवर्तन आएगा.
नाइस.
फिर सोसाइटी में परिवर्तन आएगा. तो मरकरी इज अ नंबर ऑफ चेंज. पर चेंज कहाँ लाना है, दैट्स इंपॉर्टेंट. अपने आप में तो ला ना पाओ. बातें बड़ी बड़ी ये सही है. That's mockery. So next number comes, that's sixth number, Venus. Beautiful number. Venus को maximum लोगों ने डिजायर का नंबर बोला है. इसे लोगों ने हमेशा एक नेगेटिव नंबर बोला है कि ये लस्ट है, डिजायर है. ये ब्यूटी भी है. ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज भी है.
इसको लक्ष्मी भी बोलते हैं,
अष्टलक्ष्मी.
हाँ, शुक्र भी बोलते हैं, लक्ष्मी भी बोलते हैं.
अष्टलक्ष्मी, समृद्धि. एक होता है अमीरी. अमीरी का उल्टा है गरीबी. समृद्धि का उल्टा होता है असमृद्धि. आप समृद्ध हो गए ना तो असमृद्धि तो बनती नहीं है. अमीर से लोग गरीब हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ में एक पर्सपेक्टिव उनके काबू में था. बट जब लाइफ के मैक्सिमम पर्सपेक्टिव पे काम करोगे ना, अपने ऊपर काम करोगे, अंदर से लेके बाहर तक, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों के लेवल पे आप समृद्ध होके ही रहोगे. अपने आप से बात करना शुरू करो ना कि मैं कर क्या रहा हूं. मरकरी को एड्रेस करो, वीनस ठीक हो जाएगा. नंबर के आगे और पीछे वाली क्वालिटीज को एड्रेस करो, नंबर इंटैक्ट हो जाएगा. ये भी एक लॉजिक होता है नंबर को ट्रेन करने का, कि इफ यू वांट टू एनहांस योर वीनस, आपको वीनस ठीक करना है, अपने 5 नंबर को और अपने 7 को एड्रेस करो, अपने केतु को, अपनी ग्राउंडिंग को, और अपने मरकरी, अपनी बुद्धि को बैलेंस कर लो, आपके अष्टलक्ष्मी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी.
और ये भी किसी का शादी के बाद मतलब ऐसा धनवान बन जाते, बिकॉज़ वो लक्ष्मी नारायण योग बन जाते हैं.
देखो, किसी का शादी के बाद अवेकन होना तो किसी की भाग्य वृद्धि कहते हैं. आपका पुरुषार्थ वृद्धि भी होनी चाहिए ना.
ओके.
आप भाग्य के भरोसे कितना खेल सकते हो, आप भाग्य पे कितना जी सकते हो. आपका पुरुषार्थ अगर रेज नहीं हुआ तो आप भाग्य के भरोसे कब तक खा लोगे. आपकी शादी अच्छे घर में हुई है, आपका जो पार्टनर है वो बढ़िया है, उसके वजह से लाइफ चल रही है, या किसी एसोसिएशन से लाइफ अच्छी चल रही है, दैट्स ट्रू. हो सकता है बच्चा पैदा हुआ, उसका लक मिला, इसका वो लक मिला, बट वो लक एग्जॉस्ट भी हो सकता है. एक ना एक दिन वो लक एग्जॉस्ट हो गया तो फिर क्या करोगे, अगला बंदा ढूंढोगे कि अब लकी लोगों की लिस्ट लेके आओ कि मेरे जीवन में ये लकी होता है, ऐसे चलोगे. नहीं, आपका पहले पुरुषार्थ होना चाहिए, आपके एफर्ट्स होने चाहिए. और एफर्ट्स करने में डरना नहीं है कि मेरी तो हालत नहीं है. लोग वो भी होते, मैं कल एग्जांपल दे रहा था कि एक बार ना आर्मी वाले लोगों के पास चलना, जहां पर ना उनका एक ऐसा एक सेगमेंट होता है जहां पर उनके अंग भंग हो जाते हैं. एक बॉम्ब ब्लास्ट का केस आया था हमारे पास में, कि एक ग्रेनेड के ऊपर एक सोल्जर ने अपने बुलेट प्रूफ वेस्ट के साथ अपनी चेस्ट रख दी अपनी बटालियन को बचाने के लिए. थंप हुआ, इतनी जोर से बाउंस हुई, चेस्ट पे इंपैक्ट नहीं आया, बट जहां वो गिरा उसके दोनों पैर कट गए.
अच्छा.
और अब वो प्रोस्थेटिक्स के साथ में वॉलीबॉल खेल रहा है.
ओ बॉय. कैसे?
चेयर पे बैठ के हाथ से वॉलीबॉल खेल रहा है, और लातों वालों के साथ, जिनकी लातें हैं उनसे तेज वॉलीबॉल के लिए अपनी व्हीलचेयर को भगा रहा है.
कल भी मैंने एक सीन सुना था कि कोई मतलब हैंडीकैप था, तो दे कम फ्रॉम अ प्लेस माथेरान से लेके इधर कोलाबा तक, तो they are happy in themselves, तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता.
हम ना उन्हें लोगों को देखकर सिर्फ हीन भावना लेके आते हैं. हाय बेचारे. वो हीन नहीं है. उनकी बॉडी का एक पार्ट वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ उनकी बॉडी के बाकी पार्ट में कितनी ताकत आ गई ना, क्योंकि वो उस एक पार्ट की ताकत पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो गई है और आपको अंदाजा भी नहीं है वो क्या बन चुके हैं. जितने भी हमारे पास ये जो एम्प्यूटेड लोग आते हैं ना, मैं सिर्फ इन्हें समझाता हूँ, सिर्फ तुम अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे हो. मैं इस पोजीशन में रहा हूँ कि मेरी लेग ने वर्क करना बंद कर दिया था, पैरालाइज था मैं, मेरी आधी बॉडी पैरालिसिस में आ चुकी थी. मैंने सिर्फ अपनी एनर्जी को ही स्टडी किया था उस टाइम बैठ के कि क्या मेरी पूरी बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई है या इधर की एनर्जी कहीं और शिफ्ट हो गई है. तो आई वॉज वेरी मच केपेबल, तभी आज ये बातें कर पा रहा हूँ आपसे. तब समझा, आज उसे काम में लाया. वीनस आपका तब एक्टिवेट होता है जब आपका ये पुरुषार्थ एक्टिवेट होता है.
अच्छा.
6 नंबर और 9 नंबर इंटररिलेटेड होते हैं. 9 का मतलब है पुरुषार्थ, वेलर, मेहनत, और 6 का मतलब है प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी तब आएगी जब 9 का वेलर आपको सपोर्ट करेगा.
यिंग एंड यांग जैसे.
एग्जैक्टली, यिंग एंड यांग, शिव एंड शक्ति. अगर आपको अपना वीनस बढ़ाना है, अपने मार्स को एक्टिवेट कर दो, आपका वीनस खुद ब खुद एक्टिवेट होगा. लोग इन बातों को जानते हैं पर लाइफ में अप्लाई नहीं करते. यू नीड टू एक्टिवेट 1 power of you टू एक्टिवेट अनदर पावर ऑफ यू. और आपके शिव को जागृत करने के लिए शक्ति इंपॉर्टेंट है, शक्ति को जागृत करने के लिए शिव इंपॉर्टेंट है.
बराबर है.
6 नंबर प्रॉस्पेरिटी तब देगा जब आपके अंदर वेलर आप लेके आ जाओगे. और वेलर कहां कहां चाहिए होता है? हर जगह. शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, जॉब चाहिए, मेंटेलिटी चाहिए, लाइफ में सुबह उठना है. आप पड़े पड़े सोच रहे हो कि मैं 11 बजे उठ के प्रॉस्पेरिटी ले लूंगा. अच्छा, ले लो. मिल कब तक रही है वो भी देख लेना. थोड़े दिन मिलेगी, चली जाएगी.
मैंने एक चीज और देखी, जो लोग लेट होते हैं ना, उन लोग के बैक में बहुत प्रॉब्लम्स होती है.
देखो, बैक में और नी में दिक्कत होती है आपके इमोशंस से. जब भी आप लेट उठ रहे हो ना, तो आपकी माइंड से एक वाइब्रेशन आ रही है कि यार शिट, लेट हो गया. मैक्सिमम लोग आती है, चाहे वो सेटिस्फाइड हो, वो अनसेटिस्फाइड हो, वो घड़ी देखते हैं, अरे यार
लेट हो गया.
नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला, बस इतना ही, अरे यार गिल्ट आ गया. जैसे ही गिल्ट आया, तुरंत घुटने गए, स्पाइन गई, शोल्डर गए. जितने लोगों के अंदर गिल्ट होता है, रिमोर्स होता है, रिग्रेट होता है, ईगो होता है, एंगर होता है, नीज और जॉइंट सफर करते हैं. एक बार ऑब्जर्व करके देखना, आपके जितने व्यूअर्स हैं, इनसे पूछ के देखना इस बात को. आपका वीनस तब खराब होता है जब आपका वेलर डाउन होता है. आप अपने वेलर पे काम करते हो, सुबह उठ के ताकत लगाते हो. सुबह उठने में हिम्मत चाहिए होती है, मन नहीं करता सुबह 3 बजे उठने का. मेरा भी बहुत बार होता है कि मेरा मन नहीं कर रहा, बट मैं याद दिलाता हूँ, बेटा किस काम के लिए पैदा हुआ? सोने के लिए. उठ जाओ. तो सुबह सुबह अपने आप को सेल्फ बूस्ट करते हैं डेली. लोग कहते हैं सर उठा नहीं जाता, बाकी सब ठीक है. मेडिटेशन करते हैं दोपहर के 1 बजे. अब क्या कद्दू ले रहे हैं तुम्हें? अगर मान लो कहीं तुम्हें कोई मामले में ऐसा कुछ हो कि तुम काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल अपने अपना रहे हो, तो समझ में आता है कि भाई अपने वेलर के लिए देर तक सोना पड़ रहा है. तो वेलर को पहले जस्टिफाई कर लिया ना आपने, अब वीनस भी एक्टिवेट हो जाएगा ना आपका. बट जब आपके पास चॉइसेस थी और आप सोना प्रेफर कर रहे हो, तो वेलर कहां से एक्टिवेट किया फिर आपने? That's why the Venus hampers. The Venus is totally dependent upon 9 and 9 is totally dependent upon 6. Mars or Venus ka beautiful combination hota hai. Next number, 7 number. Ketu number. Ketu number hamare paas mein kya hai? Root. Aapki genetics, aapki lineage, aapki gehrai, aapki groundedness, aapka research, aapka akelapan. Aap duniya se 9 track kar pao, that is 7. साथ ऐसे लिखा होता है, नीचे उतरता है. आप गहराई में जाओ तो सही, ग्राउंडिंग करो तो सही, जो 7 एक्टिवेट रहा हूं आपका. पर लोगों को पहले ग्राउंडिंग में मुसीबत आती है. सर हर वक्त कोई कैसे अवेयरनेस स्टेट में रह सकता है? मैंने जैसे कोई हर वक्त मूर्ता और पूर्ण स्टेट में रह सकता है.
आज ही कन्वर्सेशन किया था किसी के साथ मैंने.
लोग इस बात को क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि हम हर वक्त मूर्ख क्यों हो सकते हैं? वो इस बात को काउंटर क्यों करते हैं? सर आप तो पागल हो, आप हर वक्त अवेयरनेस स्टेट में रह सकते हो. ओके, कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए तो ये.
बिकॉज अगर सबकॉन्शियसली हम लोग ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं इस स्टेट में रहने के लिए, अनअवेयर स्टेट में, तो अवेयरनेस स्टेट में रहने के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं.
वैसे वर्षा होता है,
होता है.
आप ये कह सकते हो कि आप रो सकते हो तो आप हंस भी सकते हो ना. तो काउंटर भी तो हो सकता है ना. बट आपने चूज करा कि मुझे रोने पर तो सिंपथी मिली, हंसने पर मेरे साथ कोई नहीं होता. लोग उम्मीद करते हैं अगली बार भी हंसाऊंगा. ये आपकी चॉइस है. दैट्स पर्टिकुलर योर चॉइस. आपके बार बार चॉइसेस जो होती हैं वो आपका केतु डिस्टर्ब करती हैं. आप शैलो खेलोगे, आप डीप नहीं जाओगे, केतु डिस्टर्ब होगा. लाइफ की गहराई, लाइफ का अकेलापन, अधूरापन समझना पड़ता है. अपने उस अकेले सेल्फ को डेजिग्नेट करना पड़ता है बार बार. आप अकेले हो ही नहीं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां खड़ी हैं आपके साथ में. आप किसी एक इंसान के रोने को रोना मान के बैठे हो. सच्चा प्यार नहीं मिला मुझे, पैसा नहीं मिला, मेरे माँ बाप, अरे भाई तू चल तो सही, आगे तो चल. एक नहीं मिले 100 मिल जाए कल को. अपने माँ बाप नहीं मिले ना, 70 का आशीर्वाद मिल जाएगा तुझे. फैमिली खाली वो नहीं होती जो पैदा करती है, फैमिली वो भी होती है जो साथ जुड़ जाती है. व्यक्ति उस अकेलेपन को इतना समझ रहा होता ना, मुझे इस इंसान से ये चाहिए था. खराब कर लोगे तू,
एक्सपेक्टेशन
राहु बढ़ जाएगा कि तू नीचे हो जाएगा. ये एग्निस्ट और एंटागनिस्ट होते हैं. एक राइज करता है, एक फॉल करता है. राहु बढ़ेगा केतु नीचे आ जाएगा, केतु बढ़ेगा राहु नीचे आ जाएगा.
बेसिकली इंटरटाइड, राइट?
एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ बीम बैलेंस. तराजू के पढ़ ले कि एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर आएगा.
सीसो,
आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हो. केतु को इम्प्रूव करना है, अपनी गहराई को समझो. गहराई को, अकेलेपन को, अध्यात्म को, मेडिटेशन को एब्जॉर्ब करो, अंदर तक पहुंचने दो. पर एक बहुत अफसोस वाली बात क्या है कि जब हम रियल टॉक करेंगे ना, हम असली बात करेंगे, हम जब भी कुछ ऐसी बात करेंगे जो कि वास्तविक होती है, लोग बहुत ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, सब्जेक्टिफाई करते हैं, लोग काउंटर करते हैं. इसके होता होगा साथ में, ये ऐसे करता होगा. हाँ मैं करता हूँ, मेरा तो हो रहा है, वर्क कर रहा है, तुम्हें नहीं करना मत करो. ट्रॉल्स होते हैं, बहुत ट्रॉल करते हैं मुझे, ये ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, वैसा कर लेता. मुझे अभी पिछले मेरे पॉडकास्ट में कहा कि चश्मा क्यों नहीं ठीक कर लेता भाई अपना. मैंने कहा -9 है, इस लूलू को कोई बताया कि -9 को ठीक कैसे करा जाता है. मेरा -32 होता था जो कि रेंज भी नहीं एग्जिस्ट करती. पर इन मूर्खों को समझाना पॉसिबल नहीं है. तो ट्रॉलर्स के लिए एक आंसर होता है मेरे पास में कि बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा और हार्ड ट्राई करो. इस कमेंट से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम और ऊंचे उठो. मूर्ख लोग हैं, इनको नहीं समझ में आएगा,
नहीं समझते.
और लोग इतने भी हैं मेरे पास में, एप्रिसिएशन के लिस्ट भरी होती है कि सर आपकी इस बात से ना हमने अपने डिप्रेशन से अपने आपको स्टेट से बाहर निकाला. हम भी जी रहे थे आपकी तरह, हम भी दवाइयों के इफेक्ट में आए थे, स्टूडेंट्स ने हमारी बॉडी पे इफेक्ट करा. आपने कहा कि आप भी कर रहे हो, हम भी शुरू करते हैं. मेरे कितने ही पेशेंट्स हैं, कितने ही क्लाइंट्स हैं मेरे पास में, कहते हैं सर सुबह 3:30 बजे ना आपकी वजह से उठना शुरू हुआ. मैंने बात भी नहीं की उनसे आज तक. मेरा वीडियो देखा, उससे इतना मोरल बूस्ट हो गया. केतु ठीक हो गया ना, केतु तक बात पहुंच गई ना. अब अकेलेपन से डरने लगता, अब सुबह से उठने से डरने लगता. वो अकेला मेडिटेशन करना मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है. सुबह उठ के अपनी सांसों पे ध्यान करना, विचारों को रोकना, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है. लाइफ आसान चॉइसेस थोड़ी हर वक्त.
मेरा तो अलग ही था, मेरे को मेरे आत्मा ने बोला चल चालू हो जाओ, चालू हो गया.
आपने सुना ना, आपने रिसेप्शन करा ना. मैंने बोला नंबर के आगे वाला और पीछे वाला दोनों को ध्यान देना है. आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, नंबर 6 प्रॉस्पेरिटी का है, नंबर 8 काल का है, टाइम का है. आपका टाइम आया अवेक होने का, आपने सुन लिया ना उसे, केतु एक्टिवेट हो गया. अब लोग अपने कानों में उंगली ढूंस के बैठ जाए सुबह सुबह कि मुझे सुनना ही नहीं है,
सुनना ही नहीं है.
मैंने 100 बार बोला कि मेडिटेशन करने का सोना नहीं होता. कई लोग सोते हैं, मैंने कहा कि बेटा आधे घंटे या पौने घंटा सो सकते हो, 30-45 मिनट सो सकते हो. सर नींद बड़ी अच्छी आती मेडिटेशन करके, हम 4 घंटे सोए थे. मैं कहा तुम वापस उसी स्टेट में चले गए जो मेडिटेशन से पहले थी. तुमने नींद एंजॉय कर ली, तुम्हें नींद नहीं चाहिए था, तुम्हें अपनी थकान हरारत को उतारना था सिर्फ.
मेडिटेशन से याद है, अल्फा बीटा थीटा वेव्स वो जनरेट होती है, राइट? तो उनको कंट्रोल करने के लिए नंबर्स भी काम आते हैं.
देखो नंबर्स को आप इतना मत समझो कि नंबर्स आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं. आपकी ब्रीदिंग, अल्फा बीटा थीटा सब कंट्रोल कर लेती है. स्टेट होती हैं ये, कि आपका माइंड किस स्टेट में है, वो कौन सी वेव सिक्रीट कर रहा है. आपकी ब्रीदिंग में इतनी पावर है, नंबर्स छोड़ो आप ब्रीदिंग को कर लो. अब मैं कहूँ थीटा वेव को कंट्रोल करता है 1 नंबर, तो माला पहन लो 1 नंबर की और थीटा वेव कंट्रोल हो जाएगी. सुपरफिशियल है ना. रियल थिंग क्या है, सांस लो भाई, नंबर कंट्रोल हो जाएंगे. सांसों से नंबर कंट्रोल होते हैं, नंबर से सांसें कंट्रोल नहीं होते.
ये सब क्वेश्चंस नंबर मैंने कमेंट्स में पढ़े, इसलिए मैं पूछ
मुझे बिल्कुल पता है. लोग पूछते हैं हमसे कि कौन से नंबर का हम जाप करें कि हमारा आलस्य दूर हो जाए. मैं कहा अगर ये मुझे किसी दिन पता लग गया तो तुझे जरूर
बताऊंगा.
हमारे पास एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत आते हैं. लोग मुझसे बहुत कहते हैं सर एक प्रोकास्टिनेशन की हैबिट ब्रेक नहीं हो रही. आजकल ये वर्ड बड़ा फेमस है,
प्रोकास्टिनेशन.
पिछले कुछ सालों पहले नहीं था ये वर्ड, अब बताइए कहां से एकदम.
पहले आलस था,
पहले आलस था, हराम घोरी थी. हमारे पापा कहते थे एकदम जाहिल हो रखा है. माय फादर वाज एन आर्मी, तो ऐसे वर्ड यूज करते थे. तो आजकल सुना मैंने बड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, प्रोकास्टिनेशन बहुत हो रहा है. आप अपने डिसिप्लिन को हाई करो, प्रोक्रास्टिनेशन से ही टूटेगा, डिटर्मिनेशन हाई करो। रात को सोने से पहले अपनी मेंटालिटी के अंदर एक वर्ड डालो कि मुझे करना है, गोल क्रिएट करो पहले दिमाग के अंदर। शरीर नहीं उठ पा रहा कोई बात नहीं, पर दिमाग को सोने से पहले डेली वर्ड दो, शरीर मजबूर हो जाएगा। पहले मनसा, फिर वाचा, फिर कर्मणा, चीजें होती होती हैं। माइंड में बोला, मुंह से अफर्म करा, लाइफ में हो जाएगा। जब माइंड में ही डाउट आ गया कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, माइंड ने कहा हे हे हे, यही डाउट आ गया। अब ना तो मनसा में आया, वाचा में भी झूठा आएगा और कर्मणा हो नहीं पाएगा। तो यू आर डाउटिंग योर ओन सेल्फ। केतु नंबर 7 जो होता है, केतु ऐसा है कि ध्वज है, ध्वजा है, ये कर्म पे आधारित होता है। राहु जो है बातों में कभी शेर हो जाता है, बट केतु हरकतों में शेर होता है, शांति से खेलता रहेगा और अपने आप को बहुत हाई कर देगा। राहु बोल के करता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसा हो सकता है हो पाए या ना हो पाए, बट केतु जो होता है स्टेल्थ मोड में प्ले करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है। लाइफ में जितने मिरेकुलस प्रोसेस हैं सारे 7 नंबर वाले हैं, 7 चक्र 7 कलर्स 7 सुर, जो बेसिस ऑफ लाइफ है वो 7 से कनेक्ट होती है। तो 7 आपके अंदर का रूट कॉज है, आपका जेनेटिक्स है।
अच्छा,
राहु जो है आपका फिजिकल सुपरफिशियल कॉज है। राहु की दशा में हम कभी बार कहते हैं कि लोगों को अपनी शक्ल दिखाओ, अपना फेस दिखाओ। केतु की दशा है, चुप चुप जाओ, सामने बताना। क्योंकि नंबर 1 सामने आने का है, 1 छुपने का है। केतु जो है आध्यात्मिक नंबर है, बट कहीं लॉस से भी जुड़ा हुआ है। केतु के साथ में पहले कोई लॉस आता है बड़ा, और तब ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो केतु इज कनेक्टेड विद कि यू हैव टू लूज योर ग्रिप फर्स्ट। मुट्ठी खुलेगी तब कुछ मिलेगा,
डेफिनेटली।
और जितने व्यूअर सुन रहे हैं उनके पास भी होगा कि कुछ मुट्ठी के अंदर था, पहले छूटेगा और फिर शायद इससे बड़ा मिल जाए। तो अपनी मुट्ठी खोलने से डरना मत, दैट्स केतु। केतु के बाद आता है हमारे पास नंबर 8, ब्यूटीफुल नंबर, सबसे डेंजरस कहते हैं इसे शनि। बहुत लोग डरते हैं इससे, पर शनि सबसे प्यारा दोस्त है आपका। क्योंकि जो आप कर रहे हो, जो आप करने वाले हो, जो आप कर चुके हो, सभी तो शनि है। तो आपके है। साथ में अगर कोई नंबर हमेशा जुड़ा हुआ है तो ये कार्मिक नंबर का सीक्वेंस जुड़ा हुआ है। राहु, केतु, शनि ने कार्मिक नंबर्स कर देते हैं। ये कभी भी आपको छोड़ते नहीं है, अंधकार कभी आपको छोड़ता नहीं है। प्रकाश तो क्रिएट करना पड़ता है, कुछ करने के बाद प्रकाश आता है, अंधकार तो वहीं का वहीं है। और अगर आपने उस डार्कनेस के अंदर अपनी क्रिएटिविटी कर ली, यू आर अ मास्टर। मास्टर वो नहीं होता जो लाइट के आने के बाद मास्टर बने, मास्टर वो होता है जो अंधकार को पूरी तरह समझ ले और उस अंधकार को कैसे यूज करना है
और खुद लाइट बन
वो
जाए।
समझ जाए। वो लाइट फिर दुनिया कह देती तुम लाइट हो, बट मास्टर को पता है कि वो कितना अंधकार है। क्योंकि अगर अंधा नहीं होता अंदर से तो आंखें कैसे खुलती। बाहर की बंद हुई तब अंदर ही खुली। तो कहीं तो अंधा होना पड़ेगा। कई लोग बाहर की खोल के बैठे होते हैं, उनके अंदर की बंद पड़ी होती है। शनि और केतु ना आपका ऐसा ही पर्सपेक्टिव है। शनि को अगर देखें तो एक तरह से आंखें भी लगती है कि दो आंखें देख रही हैं किसी। इनफाइनाइट भी कहते हैं शनि को, काल चक्र भी कहते हैं इसे, नंबर ऑफ टाइम भी कहते हैं। टाइम आपको हर वक्त देख रहा है। लाइफ में पैसा कमाओ ना कमाओ, अच्छा गुजरे खराब गुजरे पैसा, समय व्यर्थ मत करो। जिसने टाइम वेस्ट करा उसने लाइफ वेस्ट करी।
शनि ऐसे बोलते हैं कि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट, इसलिए रिजल्ट्स भी बहुत स्लो आ जाते हैं।
शनि स्लो मूविंग जिसे कहते हैं ना, ये बहुत एक नैरेटिव अलग है। शनि का मतलब होता है कि जूम इन इफेक्ट। आप जब बहुत दूर से पैन कर रहे हैं ना, चीजें फास्ट दिखती हैं, और जब बहुत क्लोज ऑब्जर्व करते हैं चीजें स्लो हो जाती हैं। यही फर्क है बस शनि को समझने में। लोग कहते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत फास्ट मूव करते हैं, शनि स्लो जा रहा है। शनि स्लो नहीं जा रहा, शनि बहुत पास आ गया है। आप और मैं यदि बहुत पास आ जाएं ड्राइव करते करते, तो आपके लिए मैं कांस्टेंट हूं, मेरे लिए आप कांस्टेंट है। ना आप हिल रहे ना मैं हिल रहा। अब मैं दूर से आपको फ्रेम में देख रहा हूं, आप मूव कर रहे हो मैं मूव कर रहा हूं। तो सैटर्न इज अबाउट जूम इन इफेक्ट। वो लाइफ में हर चीज को ऑब्जर्व करने का मार्कर है।
दिस इज वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट आई गॉट टुडे।
लोग यही समझते हैं कि स्लो मूविंग प्लैनेट है, इट्स नॉट अ प्लैनेट ऑफ स्लो मूवमेंट। वो स्लो क्यों का दिख रहा है, क्योंकि आपका परिपेक्ष वैसा है। शनि स्लो नहीं होता, शनि का मतलब ऑब्जर्व करो ढंग से, बी ऑब्जर्वेंट। अब अगर कोई स्लो मूविंग कह रहा है वो किस हिसाब से कह रहा है, क्योंकि स्लो में ही ऑब्जर्वेशन हाई हो सकती है। जब आप फास्ट मूविंग करते हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन तो होती नहीं, आप तो डिस्ट्रक्शन में या डिविएशन में चले जाते। शनि का मतलब होता है केयरफुल।
और एक क्वेश्चन था, अगर किसी के लाइक पत्री में शनि केतु एक साथ हो तो क्या 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 होता है, मतलब पॉजिटिव एंड कॉज?
ध्यान देने का पर्पज है. शनि का मतलब क्या है? रूट पे फोकस. केतु का मतलब क्या है? रूट पे फोकस. आपको किसी जगह पर हाईली केंद्रित होना पड़ेगा, अपने रूट को, अपने गट को, अपने इंटेस्टाइन के इमोशंस को समझना पड़ेगा, उस हाउस से रिलेटेड कार्मिक चीजों को समझना पड़ेगा. पास्ट लाइफ के रिजल्ट्स भी आपके पास में इंक्लूड होंगे, आपके पितर भी आपसे कनेक्ट करेंगे. वो जो हाउस है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहा है. केतु रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर, शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर, उस हाउस से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएंगी. अब इसके नरेशन में लोग कहते हैं कि आपका दिमाग जड़ित हो जाता है, आपका समय आपको भ्रमित कर देता है, वो सब बातें हो सकती हैं किसी के साथ भी. बट बेसिक फैक्टर क्या है? सैटर्न का मतलब है जूम इन. जहां शनि बैठा हो उस हाउस के कैरेक्टर को जूम करके देखो. फिर वहां पर हम डिविजनल चार्ट भी एनालाइज करते हैं, क्योंकि जब जूम इन की बात आती है तो डिविजन चार्ट भी देखे जाते हैं. जिन एस्ट्रोलॉजी आती है उन्हें पता होगा ये सब बातें, जिन एस्ट्रोलॉजी नहीं आती बिल्कुल भी तुम्हें देहला समझ में नहीं आने वाला इस बात के बारे
में. डिविजनल होता है,
डिविजनल चार्ट को देखना पड़ेगा आपको, और देखना पड़ेगा माइक्रो मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो रही है. आपकी मैक्रो पे ध्यान मत दीजिए उस वक्त केवल, आप अपनी माइक्रो पे भी ध्यान दीजिए. जहां केतु बैठा हो वहां का भी इम्पैक्ट होता है कि आपको उससे जुड़े कुछ हेरिडिटिकल काम करने पड़ेंगे, जेनेटिकल काम करने पड़ेंगे. शनि जहां बैठा होता है ऐसा भी होता है कि आपको अपने फादर की जितनी इनकम्प्लीट चीजें हैं वो भी करनी पड़े, या फादर के एंटी जाकर भी चीजें करनी पड़े. शनि अपने पिता के हमेशा खिलाफ रहे
बराबर है,
तो एंटी इफेक्ट भी आता है ऊपर. देखिए प्लैनेट के ना बहुत वेरिएंट्स होते हैं, लोग ना एक पर्सपेक्टिव को लेकर उछाल देते हैं और कहते हैं कि यही लिखा था यही पढ़ा था. लिखने वाले ना ऋषि थे.
वो बहुत डीप है, मतलब exactly. अंदर जाओगे उतना अंदर ही जाते जाओगे.
शनह का मतलब होता है स्लो. अब स्लो का मतलब दो तरीके से होता है, कि आप किसी के बिल्कुल क्लोज आ गए तो भी स्लो हो गए. अब आप किसी को दूर से देख रहे हो कि मतलब बहुत हल्का मूव कर रहा है तो भी स्लो है. इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सपेक्टिव ना, कि व्हाट यू आर अप टू. ऋषि ने दोनों बातें एक साथ इंक्लूड कर दी, आप एक पर पकड़ के बैठ जाओ.
बराबर है,
दैट डिपेंड्स अपॉन योर सैटर्न आल्सो ना, कि आपका पर्सपेक्टिव कैसा है. सैटर्न का मतलब एनालिसिस भी होता है. सैटर्न का मतलब डीप रिसर्च और बाल की खाल निकालना.
एक चीज मैंने अभी रिसेंटली सीखी कि लोग पर्सपेक्टिव से नहीं परसेप्शन से देखते हैं.
एग्जैक्टली, उनका अपना वो प्रिजुडिस हो जाते हैं, माइंड को पहले बना लेते हैं कि हमें ये नहीं, ये तो ऐसा ही होगा. अरे आगे देख तो सही कैसा होगा. केतु और शनि दोनों का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन को हाई कर दो.
ओके,
आप डाइसेक्शन हाई कर दो, लाइफ का हर एक एंगल खोल के देखो. आपसे कोई मिस्टेक हो गई, लाइफ ग्रो नहीं कर रही, आप लाइफ को एनालाइज करो, गलती हो कहां रही है. आपने मिस्टेक के अलावा ये समझ लिया मेरे तो कर्म ही खराब है, मेरे इस टाइम पर ये हो रहा है, मेरे तो प्लेनेट खराब होंगे. और एक क्वेश्चन और आता है कई बार, मुझ पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है. मैंने कई बार क्लाइंट से कहता हूँ सॉरी माफ करना मुझे, इतने लोग सुन रहे हो, मैं कहा बेटा अपना मुंह देख गौर से, ब्लैक मैजिक करने में खर्चा होता है, इस मुंह पर मैं 10 रुपए खर्च ना करूं. कोई तुझ पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है ब्लैक मैजिक करवाने के लिए, वो तेरा कितना घनिष्ठ संबंधी है. और ब्लैक मैजिक क्यों करा रहा है, उसे क्या शौक चढ़ेगा तुझसे बेहतर होने का. वो तो ऑटोमेटिकली हो गया ना तुझसे बेहतर, जब तूने अपने आपको डिमीन कर लिया, छोटा मान लिया, तुझसे बेहतर तो हो गया. किसी ने तुम्हारे दिमाग में भ्रम डाल दिया कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझ पर ब्लैक मैजिक करूंगा. मुझ पर 100 लोग कहते हैं दिन में ब्लैक मैजिक करूंगा, मैं कहता हूँ करो तो सही, मैं तुम पे व्हाइट मैजिक कर दूंगा, तुम पे पर्पल मैजिक, बरगंडी मैजिक कर दूंगा, फूशिया पिंक मैजिक करूंगा. लॉजिक सिंपल है, अगर मैजिक होता है तो यहां से होता है पहले, मेरे स्व से मैजिक होगा. अगर नहीं है, अगर यहां से ही नहीं हो पा रहा तो बाहर से क्या मैजिक कर ले कोई मेरे पे.
बिकॉज मैं रिसेंटली ये भी सुना था कि व्हाटएवर हैपेंस टू योर हार्ट,
यत पिंड तत् ब्रह्मांड,
ब्रह्मांड यस,
पिंड में ही नहीं हो पा रहा ब्रह्मांड में क्या होगा. और ब्रह्मांड में होगा तो पिंड में तो अपने आप ही आएगा. आप अपने मैजिक को अंदर से क्रिएट करते हो, बाहर तो उसका आउटकम दिखता है आपको होता हुआ, उसका अफर्मेशन तो कई सालों पहले आप ले चुके होते हो. मैंने बचपन में एक बाइक की फोटो दिखाई थी अपने कजन को, बहुत छोटी एज की बात है, और मैं भूल गया. जब मैंने बड़े होकर अपनी पहली बाइक ली तो मेरे कजन ने कहा भाई ये तो वही फोटो है जो आपने मुझे कभी दिखाई थी जब हम 8 साल के थे. मैं तुझे याद है, कहता मुझे अच्छे ढंग से याद है, आपका नरेशन यही तो था. आज मेरी लाइफ वही है जो मेरे बचपन में डिजाइन की थी. मेरे फादर एक वर्ड बोलते थे मुझे, जब मैं बहुत छोटा रहूंगा गोद में रहूंगा तो सब पूछते थे मुझसे कि शादी करेगा साधु बनेगा. मैं साधु बनूंगा। अब बाबा छेड़ते थे मुझे जाने से पहले, तूने तो शादी कर ली। मैं बाबा साधु का मतलब है स्वाधु, जो अपने आप को धुन रहा हो, जो अपनी ही धुन में चल रहा हो। बाबा वही जा रहा हूं। हम बचपन में जो प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं ना, अफर्मेशन करते हैं, वही तो शनि है हमारी। आपका कर्म कब बना? जब आप बनने शुरू हुए। अपनी प्रिपरेशन को ठीक कीजिए, शनि कभी खराब नहीं होगा। अपना बेसिक ठीक कीजिए, शनि और केतु कभी कुछ नहीं कहेंगे। लोग सोचते हैं कि आउटकम अभी अभी आया, ताजा ताजा कुछ हुआ, इसका परिणाम मिला, मुझ पे किसी ने गंदी नजर डाली, मेरे परिवार पर किसी की नजर है। मैं कहता हूं मुझ पे तो पता है कितनों की नजर पहुंच चुकी है। मैं तो और खुश होऊंगा, तुम और नजर डालो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, डालते जाओ नजरें, सारे चैनल्स पे डालो मेरे। यही तो चाहिए मुझे बिजनेस के लिए। ये खराब थोड़ी है,
जितने देखेंगे
चिढ़ने वाले चिढ़ेंगे, अच्छा सोचना अच्छा सोचेंगे। व्यूअरशिप तो बन रही है ना, आप व्यूअरशिप को इतना बड़ा डिमीनिंग स्टेटमेंट क्यों बना रहे हो?
बहुत जजमेंटल हो गए।
एग्जैक्टली, आप यूनि टाइप हो गए ना, अपने आपने यूनि थॉट प्रोजेक्शन ले लिया कि लोग तो मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। तुम अपना कर्म करो, तुम उनकी सोच में मत घुसो कि कोई बारे में मेरे बारे में सोच रहा है, अब मुझे उसकी सोच पे काम करना है, मैं अपने पे काम कर सकता हूँ। दैट्स वेरी सिंपल। शनि ठीक हो जाता है अपने पे कर्म करने से या कर्म करने से।
मेरा जब 7:30 ही स्टार्ट हो गया था ना, तो मैंने एक ही चीज बोला था कि शनिदेव मैं आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ, मुझे जो इधर लेके जा रहे हो उधर लेके जाओ, बाकी मैं काम करूंगा।
मेरी मैक्सिमम डेवलपमेंट 7:30 ही हुई है। मैं पैदा शनिवार को हूँ, मेरा जन्म का समय भी शनिदेव के अधीन है, अष्टमी में पैदा हुआ हूँ मैं, तो मैं तो शनि से भरा पड़ा हूँ।
बिकॉज मैंने मोदी जी बेसिक मेरा तो भाई वो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 7:30 में, उनका भी नंबर मूलांक 8 होता है, एंड दे आर वेरी वेरी पावरफुल नाउ।
आपने मोदी जी की बात करी, अभी मैंने बहुत गाली खाई मोदी जी के चक्कर में। मोदी जी सुन रहे हो तो सुन लेना इस बात को, तुम्हारे चक्कर में बहुत गाली पड़ी है। मैंने कहा कि राम मूर्ति को जब एक्टिवेट कर रहे थे, जब उसका प्राण प्रतिष्ठान कर रहे थे, तो मोदी जी का ऑरा देखा कितना स्ट्रांग था। मुझे बड़ी ट्रॉल करा गया ट्रॉलर्स ने। मैंने कहा बेटा जितना तुम्हें ट्रॉल करना कर लो, एक इवेंट था जहां एनर्जी हाई थी, मैंने उस एनर्जी इवेंट को इग्नोर नहीं करना है। मेरे देश का प्राइम लीडर अगर काम कर रहा है ना, तो मुझे उसे सैल्यूट करना होता है। मैं किसी पार्टी का मैनिफेस्टो में नहीं घुस रहा था। पर मूर्ख जनता कई बार ऐसी हो जाती है ना, कुछ जो अनपढ़ होते हैं या बेवकूफ होते हैं, कि उस बात पर घुस जाते हैं।
और पॉलिटिकल बहुत जन बोल रहे थे पॉलिटिकल एजेंडा है, और मैंने एक चीज देखी, पॉलिटिशियन नहीं था कोई, सिर्फ तीन।
आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या किस देश में रहते हो?
इंडिया में, मतलब भारत में।
भारत में रहते हो, तो आपके यहाँ राम का कोई इवेंट हो रहा है तो पॉलिटिकल पहले है या आपका नेशनल पहले है?
नेशनल पहले, नेशनल से पहले जो
मेरी प्राइड है वो राम, मेरी प्राइड है
मिट्टी से जो हमारे है।
लोग कहते हैं बाबर 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 कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, बहुत पॉलिटिकल बात क्यों कर रहे हो? मत करो ना इस बात को, आप इसे सेलिब्रेट करो ना कि राम है। राम सबके हैं, हिंदू के भी है, मुसलमान के भी, सिख के भी, ईसाई के भी है। आप सेलिब्रेट करो ना यार, आप इतने जजमेंटल क्यों होते हो कि आपको डर लग गया किसी नाम से आने से?
वही बोल रहा था ना मैं, अगर कोई मिट्टी से रिलेटेड है तो वो एंजॉय और सेलिब्रेट करो।
एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपके लगता है पॉलिटिकल इवेंट है, आप भी पॉलिटिकल इवेंट कर लो ना, अपना प्रोपेगेंडा स्ट्रॉन्ग कर लो ना, दूसरे को डिमीन क्यों करते हो? तुम्हें ट्रॉल करना है ना, उससे पहले मेहनत करके अपनी औकात बढ़ा लो ना। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ट्रॉल कर रहे हो, मोदी जी को ट्रॉल कर रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं भी काम कर रहा हूँ, वो भी काम कर रहे हैं, आगे काम करते जाएंगे।
मैंने अपने आप मैंने वो शंख उठाया और शंख बजाने लगा, मैं इतना खुश था ना उस दिन।
मैं खुद खुशी थी, आई एम अ प्राउड इंडियन फॉर दैट मोमेंट। मैं तो खुद इतना एनर्जी से भरा हुआ था, मेरे को इतना अच्छा लगा कि पहली बार ना एक पूरे देश में एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है।
हाँ, exactly.
We are united as a country, और not only in India, बल्कि पूरे वर्ल्ड में। मैं आपको बताऊंगा मेरे को किस किस कंट्री से टेक्स्ट आए हुए हैं, मतलब ऐसी ऐसी कंट्री, अफ्रीकन कंट्री से टेक्स्ट आए हैं कि सर वी आर हैविंग ऑरेंज फ्लैग ऑन आवर हाउस। मैं कहा तुझे पता है राम थे कौन? सर नहीं पता, पर मजा बहुत आ रहा है। मैंने कहा मजा ले फिर तू।
एक और चीज देखिए, जब से प्राण प्रतिष्ठा हो गए ना, तब से अपने इंडिया की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई।
आपके पास में लीडर जब आता है, आपके पास में जब ये अक्षर आता है राम, तो एनर्जी तो चेंज होगी ना। अब ईश्वर को जो ना माने, ईश्वर को जो खंडित करना चाहे, उसकी अपनी सोच है। छोटी सोच के लिए आप कभी भी आंसरेबल नहीं हो सकते। आपने मोदी जी का नाम लिया, आपने कर्म का नाम लिया, आपने कहा 7:30 में वो बने, आदमी मेहनत कर रहा है ना। मेहनत किसी पार्टी का कोई इंसान करे, मेहनत गलत नहीं होती। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक नहीं हो सकते, हम एक विचार के समर्थक हो सकते। मैंने अभी कुमार विश्वास को सुना था, अब चलो मैं मोदी जी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं कुमार विश्वास के बारे में बोल रहा हूँ। उन्होंने गाली खाई थी मोदी जी की, तारीफ कर दी उन्होंने, लोग उनके पीछे चिपट गए कि तुम तो किसी और पार्टी के थे, तुमने कमल कैसे खिला दिया। अरे वो इंसान विचार का समर्थन कर रहा है मूर्खो। ये समझना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, होता है, शनि है, शनि का प्रभाव है, ऐसे ही होता है। शनि दो टाइप का होता है कि काल के आधार पर जब आप केंद्रित हो जाओगे, काल आपके सर पे हावी होता है तो आप नेगेटिव बोलना शुरू करते हो। ये जिन लोगों की बात कर रहे हैं, ट्रॉलर्स की बात कर रहे हैं, मेहनत करेंगे अपने आप को बेटर करें लाइफ में, किसी गाली बकने से क्या मिलता है, कर लो जो करना है तुम, तुम्हारी जो बस की है। आप सही तरीके से काम करोगे, आप कर्म करके उससे भी ऊंची लाइन खींच लोगे। बकवास करने से कुछ कर्म थोड़ी कर, मनसा वाचा कर्म, तीनों को ठीक कर लो, बेटरमेंट, दैट्स शनि। नेक्स्ट नंबर 9, मार्स। मार्स नंबर इतना ब्यूटीफुल है कि इसकी एनर्जी यूनिवर्सल है। इसे बीज कहते हैं, हर चीज का बीज डलना ये मार्स इंपैक्ट है। गर्भ के अंदर बीज डलता है, बच्चा आता है, ऊर्जा का बीज डलता है, काम होता है। आप किसी कार्य का बीज डालते हो, काम की शुरुआत करते हो, दैट्स मार्स। मंगल कहते हैं इसे, मंगल हर चीज की बिगिनिंग में होना चाहिए, पर मंगल जब भारी हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो मंगल को विध्वंस भी कर देता है, वो अमंगलता की तरफ ले आता है, कि अंदर क्रूरता भर देता है। जब मार्स ज्यादा हो जाता है किसी के पास में, एग्रेसिव मार्स हो जाता है। मार्स की दो फ्रीक्वेंसीज हैं, कि आपके मूलाधार चक्र में भी मार्स है, जो रेड फायर,
रेड फायर एग्जैक्टली,
उसे बेसिक फायर कहते हैं, जैसे आप क्रिएट होते हो, वो क्रिएटिविटी भी है, बट ज्यादा हो जाएगी तो डिस्ट्रक्टिविटी भी बन जाती है। येलो फायर को कई बार हम डिस्ट्रक्टिव फायर भी कह देते हैं, बट रेड फायर को बिगिनिंग फायर कहते हैं। तो मार्स आपकी बिगिनिंग की एनर्जी है, हर चीज की शुरुआत मार्स से होती है। मार्शियन लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है किसी भी चीज को अच्छा बिगिन करना, बट आगे जाके बैलेंस भी करना है, शनि को भी समझना है। अब 9 नंबर के बाद क्या होता है, शून्य। तो मार्स को बेटर होने के लिए क्या करना होता है, 8 की टेंडेंसी समझनी है और 0 को भी समझना है।
अच्छा,
कि आपको शून्य होना भी आना चाहिए, आपको काल को भी समझना चाहिए। तो 9 नंबर यदि अपने मेंटल पीस को मेंटेन करे, अपने वर्क को रिलीजन की तरह फॉलो करे, स्पिरिचुअलिटी की तरह फॉलो करे, बेहतर लाइफस्टाइल।
कर्म को धर्म बना के चलो,
एग्जैक्टली, कर्म को धर्म बना के चलो। नहीं तो क्या होगा कि मार्स बहुत फिकल प्लैनेट है, मार्स एक एग्रेसिव प्लैनेट है। मैं कई बार मार्स को पढ़ाते हुए हनुमान जी का जिक्र करता हूँ, कि जब तक बंदर योनि में थे, तब तक ये शरारती बंदर जैसा था, तब तक काम करते रहे, जब राम मिल गए तो बंदर से भगवान बन गए। आपको अपने राम के साथ जोड़ना पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो बंदर वाली हरकत कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी,
चलते रहेगी।
ज्ञान के साथ जोड़ो, अपने आप को ग्राउंडेड करके चलो, किसी कंसेप्ट, किसी एक फिलॉसफी के सामने झुक जाओ। जुपिटर 3 नंबर, वीनस 6 नंबर, मार्स 9 नंबर, ये झुकते नहीं है, हर एक के सामने नहीं झुकते, पर जहां झुकते हैं ना वहां फिर झुकते हैं। इनके अंदर ये होता है, टीचर्स आसानी से सेलेक्ट नहीं करते, पर जब कर लेते हैं ना तो दे मीन इट, मनसा वाचा कर्मणा से मीन करते हैं। क्योंकि हनुमान को जब टीचर मिल गया राम ना, उसके बाद फिर कोई नहीं चाहिए था उन्हें,
नहीं 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 एग्जैक्टली,
फिर किसी की जरूरत नहीं थी हनुमान को, हनुमान वाज एक्टिवेटेड, और आज भी हम उनका नाम सम्मान पूर्वक लेते हैं। बचपन में वो उसने ऐसी हरकत करी कि वज्र खाया,
सूर्य खाने
गया, मतलब आज, मतलब ऐसा कौन सा बच्चा हो सकता है, और ऐसा बच्चा हो वो पड़ोस का कि वो बल खा रहा हो घर के, आप खुद कूट दोगे ऐसे बच्चे को, इंद्रदेव ने कूट दिया। पर बड़े होकर इतना सम्मान कमाया जब वो ग्राउंडेड हो गए, कि आज भी हमारे मन में उनको नाम लेते हो ना, एक सुकून मिलता है, और उनके नाम को लेने से आपके विघ्न भी हट जाते हैं, जो बाधाएं भी आ रही हैं, शनि भी कुछ नहीं कहता जब हनुमान खड़े होते हैं, क्योंकि महादेव की एनर्जी है, विष्णु की एनर्जी उनके अंदर। 9 नंबर के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, इसलिए कई साइंसेस में 9 नंबर को डिवाइन नंबर कहते हैं। कीरो मेथड, कैलेडियन मेथड, कबालिक मेथड, इसमें 9 को जिक्र नहीं होता, कहते हैं वो एनर्जी है, वो नंबर नहीं है। बट पाइथागोरियन कहता है कि 0 एक एनर्जी है, 9 एक नंबर है, 9 के बाद भी कोई है तो शून्य है। अब 0 क्या है, 0 एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। 0 को अगर आप कर्म के साथ जोड़ो तो 0 का एक अपलिफ्टिंग पार्ट है, जो 0 से नीचे से ऊपर ले जाएगा आपको, और यदि आप 0 के अंदर ईगो डाल दो तो डाउनफॉल भी पक्का है। तो आपका एक रेगुलेटर मैकेनिज्म है 0,
सर्किट
या तो नीचे है या ऊपर है, इट डिपेंड्स अपॉन योर कर्म। तो शून्य कैसा है? जैसे कर्म है. नौ कैसा है? नौ के अंदर भी शून्य है. आठ के अंदर भी शून्य है. छह के अंदर भी शून्य है. तीन के अंदर दो आधे शून्य है जो मिला के एक शून्य पूरा बनाते हैं. जिस भी नंबर में शून्य आएगा ना, जीरो आएगा, वो नंबर महानता की तरफ जा सकता है. ऐसा नहीं कि दूसरे नंबर नहीं जा सकते, फॉर श्योर दूसरे भी जा सकते हैं, बट शून्य ने आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दी थोड़े कर्म के हिसाब से. आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म करेंगे तब शून्य मिला है,
कार्मिक बूस्ट.
पर उस कार्मिक एनहेंसमेंट को, इस बैंक को यूज करने के लिए, उस अकाउंट को अपने काम में लाने के लिए आपको कर्म तो और भी करने पड़ेंगे. मुझे पास्ट लाइफ से कुछ एडवांटेज मिली है तो इस लाइफ में मुझे बहुत सारे ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जो उस एडवांटेज को एनकैश भी कर सकूं. खाली ये टैग थोड़ी है कि मेरे पास एक टैग है कि पास्ट लाइफ बड़ी बढ़िया थी, नंबर बड़े अच्छे मिले हैं. नहीं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई. मेरे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं सर लग्न में गज केसरी है, सेंटर हाउस में गज केसरी है. मैं, दिमाग भी उतना खराब हो सकता तुम्हारा, तुम उतने पागल भी हो सकते हो, ध्यान रखना. क्योंकि गज केसरी क्या है? एक गज और एक केसरी, शेर और हाथी की ऊर्जा है. ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. और ये मत समझना कि किसी के पास में अगर शनि का और चंद्र का प्रभाव है, जिसे हम कहते हैं विष योग, खाली वो इंसान पेन में रहेगा और तुम प्लेजर में रहोगे, ऐसा नहीं है. विष योग का मतलब ये हो सकता है कि वो इंसान कोई ऐसा साहित्य बना दे कि आपसे महान बन जाए. शोक से श्लोक आता है.
सर मेरे 12th हाउस में शनि, केतु और चंद्र तीनों है.
ब्यूटीफुल. आपके अंदर डिवाइन पावर होगी ही होगी. यदि आप अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दोगे ना, अपने एकदम अपने महादेव पर ध्यान या जिस भी ईश्वर पर ध्यान करते हो वहां पे ध्यान कर लोगे ना, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी. बारहवां होता है पिछला हाउस भी. पिछला हाउस का मतलब होता है पिछली लाइफ भी, क्या कर्म रह गए थे वो भी है बारहवां. तो बारहवें से हम पिछला भी देखते हैं. लगन के आसपास जो प्रभाव पड़ता है ना, कि सेकंड हाउस और बारहवां, ये आपका एक पर्सपेक्टिव बनाता है. कुंडली पढ़ने का एक तरीका होता है एक से लेके बारह तक, और एक बारह से लेके एक तक, इससे आप अपनी पास्ट लाइफ पढ़ सकते हो. एक रिवर्स मेथड भी होता है. तो आपको जब पूर्व जानना होता है ना, तो लगन से पीछे चलते हैं. आपका पूर्व खड़ा होता है वहां पे, तो आपका शनि खड़ा है वहां पे कर्म को करना, केतु खड़ा है कर्म को करना, और मानसिक कर्म पहले करना, क्योंकि चंद्र में भी खड़ा है. मेडिटेशन जितना हाई रहोगे ना जिंदगी में, मस्त रहोगे, मस्त माला रहोगे. और जब जब ये लाइफ में करा ना कि हाय मुझे तो ये नहीं मिला, अब दिक्कत आएगी.
बट बेस्ट मेथड क्या है मेडिटेशन के लिए? बिकॉज बहुत लोग बिगिनिंग करते हैं, राइट
जी,
तो लोगों को पता नहीं रहता है.
मेडिटेशन का एक ही मेथड है, यूनिवर्सली सिर्फ एक मेथड है, सांसों पे ध्यान. मुझे इस ब्रह्मांड ने आवाज बाद में दी, वर्ड बाद में दिए, पहले सांस दी ना. पंच तत्व हमारे पास है, तो उसमें से हम किस फैक्टर को सबसे आसानी से कर सकते हैं? या तो जल को या अग्नि को. कि जल पीकर, वो तो बाहर से मिल रहा है, अग्नि अपने अंदर से मिल रही है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. अब वायु एक तत्व बच गया हमारे पास में, जिसे हम रेगुलेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार. हालांकि मिलता हमें यूनिवर्स से, बट हमारे अंदर भी प्राण के रूप में वायु विद्यमान होती है. वायु को लेकर, वायु को अपने अंदर इनहेल एक्सहेल करके आप अपना ध्यान कर सकते हो. मेडिटेशन के दौरान अपनी आंखें बंद करें, आंखों को बंद करके अपनी थर्ड आई पे फोकस करें, और थर्ड आई के साथ साथ अपनी आती जाती श्वास पर भी फोकस करें. कि बॉडी में कहां कहां श्वास आ रही है और मेरे शरीर के अंदर कैसे बह रही है.
द फीलिंग ऑफ टच.
आप अपने पूरे शरीर को देखो ना डेली के डेली. यू आर स्कैनिंग योर सेल्फ. आप पूरे दिन क्या करते हो? या तो इसको देख रहे हो, उसको देख रहे हो. मॉर्निंग में उठे खुद को देख लो ना. इट्स अबाउट सेल्फ अवेयरनेस. दिस इज नॉट अ मेडिटेशन, दिस इज अ लाइफस्टाइल. तो अपनी वायु तत्व पे फोकस करके हर व्यक्ति बिगिनिंग कर सकता है मेडिटेशन की. इसकी टाइम पीरियड स्टार्टिंग में होता है 15 से 20 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि किसी इंसान का 8 घंटे का ध्यान है, किसी का 12 घंटे का ध्यान है तो वही ध्यान कर रहा है. मेरा ध्यान अलग टाइम का होगा, हो सकता है आपका ध्यान अलग टाइम का होगा. ऐसा पॉसिबल है कि मेरा 2 मिनट का ध्यान आपका 1 सेकंड का ध्यान बराबर हो, या मेरा 10 घंटे का ध्यान आपका 4 घंटे का हो, या वाइस वर्सा, कि मैं 4 मिनट में उतना गहरा उतर जाऊं जितना 10 साल में ना उतर पाऊं. तो ध्यान की पैरामीटर्स नहीं होते. लोग कहते हैं सर आपने तो बहुत ध्यान करा है. अरे भाई ध्यान हो गया, करा कुछ नहीं अब तक. अगर कर रहा होता तो अपने मतलब लाइफ को ही चेंज कर लेता स्टार्टिंग से.
मैं बोलता ना ट्राई नहीं करते, वो
हो जाता है. तो कई बार ना आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि आप अपनी स्टेट में रहो बस. मॉर्निंग में ना तो यहाँ कोई फालतू थॉट आए, ना फालतू कोई म्यूजिक, ना पॉम्प एंड शो, ना देवी देवता का ध्यान कि गुरु ने मंत्र दिया है पहले उसे करते हैं. कर लेना, बाद में कर लेना. गुरु से पहले आप पैदा हुए थे, गुरु का ज्ञान बाद में आया था. ज्ञान तो तब आया जब सोच आई, सोच से पहले सांस आ गई थी, सांस पे फोकस की।
माय रूटीन इज बेसिकली लाइक दिस, सो आई वेक अप, आई डू माय मेडिटेशन, उसके बाद मैं चैंटिंग करता हूं, देन अर्घ देने का अर्घ देता हूं, एंड देन आई कंटिन्यू माय लाइफ।
बेस्ट है,
दिस इज बेस्ट,
बेस्ट है। सुबेरे उठो, कई लोगों का ध्यान क्या होता है कि सुबह उठ के नहाने तक डिस्टर्ब नहीं होता, तो आप नहा सकते हो। लोग पूछते हैं कि नहाकर ध्यान करें, मेरा नहाए ध्यान करो। अगर नहाने तक आपके माइंड में थॉट आनी शुरू हो चुकी हैं, तो अगले दिन से उठते ही ध्यान में बैठ जाओ। पानी भी मत पियो, कई लोग पानी पीने में भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि पानी पीते मोबाइल स्कैन करना होता है कि चैट क्या आई है मेरे इस पे उस पे उस पे, वो सारी चेक करनी होती है। अगर वो भी हो रहा है तो पानी भी मत पियो, उठो और सीधा ध्यान में चले जाओ। अगर इतना डिसिप्लिन है, इतना रेगुलेशन है कि नहाने तक का टिप पीरियड आप वेट कर सकते हो, गो फॉर इट।
बिकॉज कुछ कुछ जन कैसे वो बोलते हैं ना, मराठी में सोवड़ा बोलते हैं, मतलब कुछ भी टच नहीं करते नहाने के बिना, कुछ भी टच नहीं करते, इसीलिए ध्यान भी नहीं करते लोग। वो फॉलो करना चाहिए कि नहीं?
एक्सटर्नल फैकल्टी से कनेक्ट हो जाते हो ना, टच क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जितना कनेक्ट हो रहे हो, आप एक्सटर्नल में घुस रहे हो। ध्यान का मतलब क्या है? इंटरनल में जाना था, आप एक्सटर्नल में चले गए। तो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट आफ्टर द साइलेंसिंग।
अच्छा,
और ध्यान का एक परिभाषा और होती है, लिविंग इन द मोमेंट। इस मोमेंट को पूरा एंजॉय करना है। ध्यान वो नहीं होता जिसके वो सुबह करते हैं, ध्यान वो होता है जो हम 23 घंटे और करते हैं, 23.5 घंटे और करते हैं, 23 hours का। अगर मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ और मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, मेरा ध्यान लगातार इधर उधर भटक रहा है, तो एक्चुअली ध्यान नहीं है। जब मैं इस मोमेंट को पूरा लिव कर रहा हूँ ना, तो मैंने मेडिटेशन किया है। आपने मैंने मेरे ख्याल से अभी तक मेडिटेशन स्टेट को पूरा एंजॉय करा है। मेरे चेहरे पर, मेरी वाणी पर, मेरी नॉलेज में आपको पूरा वो प्रखरता महसूस होगी, कॉन्फिडेंस भी अपने आप आता है, क्योंकि यू आर इन टू द मोमेंट। व्हेन यू आर इन टू द मोमेंट, यूनिवर्सल नॉलेज आपके शावर होनी शुरू होती है। हम बोल नहीं रहे होते, हमारे थ्रू बुलवाया जा रहा होता है। यूनिवर्स कहता है और बोल, ये ले कंटेंट। कंटेंट की जरूरत नहीं होती, कंटेंट अपने आप आता है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आज मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, मैं बिल्कुल ब्लैंक आया हूँ, ये सब कुछ मैं करता चला गया।
सो दैट इज इट गाइज, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। ये पार्ट वन है एपिसोड का। There is one more episode which is a surprise for you guys actually. It has been recorded. ऐसी अचानक से रिकॉर्ड किया गया था, सिद्धांत सर के साथ ही है, बट थोड़ा सा सरप्राइज है उसमें। तो उसको कंक्लूड करने का छोटा सा एपिसोड है 30 minutes का, उसको कंक्लूड करने के लिए हम लोग ने सोचा कि लेट्स कीप एन स्पेशल एपिसोड विच विल बी लॉन्च्ड टुमारो इटसेल्फ। तो कल आप देख सकते हो इस एपिसोड को। So stay tuned. So this is the end of the one episode which I'm talking about. ये numerology का एक episode है. Next episode will be on crystals and energy और healing के बारे में थोड़ा बहुत है उसमें. Crystals कैसे काम करते हैं और क्या काम करते हैं. तो we'll talk tomorrow. So that is it for today, guys. Thank you for watching the episode. If you liked it, you know what to do. Like, share, subscribe, and make sure that if you're listening on Spotify. तो आप एक काम कर सकते हो, वो है इजी काम, 5 star 5 star रेटिंग्स दे सकते हो इस एपिसोड को या फिर ये पॉडकास्ट को, किससे पॉडकास्ट को। एंड वंस यू हैव डन दैट, इफ यू वांट टू बाय अ मेंबरशिप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 89 ऑनवर्ड्स ऑन यूट्यूब। स्पॉटिफाई पे मेंबरशिप नहीं है, स्पॉटिफाई पे स्टार्ट किया नहीं है मैंने मेंबरशिप का। इंस्टाग्राम पे है मेंबरशिप, बट देयर इज जस्ट वन मेंबर व्हिच इज सपोर्टिंग मी, दैट इज फनी। But that is it for today. I hope you liked it. Tab tak ke liye bye bye, shabakhe, take care, whatever it is, and peace out. The Shang Timle signing off. Ram Ram.